धने करयसि करवाळं धुमके तुमी बकी मापी कराळं केशवधिता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नीरा जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे श्री जय देव कबेरी दमुदित मुदारं श्रृणु सुखदं सुभदं भवसारं केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय श्री श्री केशव भगवान की समवेत गौर भक्तविंद की ताय गौर हरि प्रमानंदे। आप लोग जो इधर बैठे इस तरफ आ सकते हैं, बहुत जगह है, फैन भी है, इधर गर्मी में इधर बैठने से लोग आते हैं, दरवाजे पर बैठने जरूरत है, इस तरफ आ सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं आज अति पावन व्रत का तिथि शुभ नरसिंह चतुर्दशी व्रत है। एक बार देवाधिदेव महादेव अपने प्रिय पत्नी सती देवी को कथा कहने का अवसर में ये कहते हुए कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको त्रिलोकी के दुर्लभ उत्तम व्रत का वर्णन सुनाना चाहता हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य बड़े से बड़े ब्रह्महत्या आदि दोष से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जब परमेश्वर भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं, जो ये तिथि, ये मास, ये दिन सब पुण्य के भाजन हो जाते हैं। अरे जिसका नाम मात्र उच्चारण करने से मनुष्य सनातन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वही परात्पर परमेश्वर भगवान भक्तों के मनोवंश सिद्ध करने के लिए अद्भुत नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। एक बार की बात है, जब स्वयं भगवान महादत्त हिरण्यकश्यप को वध करके नरसिंह देव के रूप में सुखपूर्वक विराजमान हुए थे, तब उनके गोद में भक्त श्रेष्ठ गानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज विराजमान थे और उनको इस प्रकार प्रश्न किए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे सर्वव्यापी नारायण, हे नृसिंह रूपधारी अद्भुत मेरे स्वामी, मैं आपके दास हूँ, मैं आपके भक्त हूँ, अतः मैं यथाजथ कारण जानना चाहता हूँ, मुझे कृपा करके बताइए कि मेरे अंदर आपके प्रति इस प्रकार जो अविचल भक्ति स्थिर हुई है, किस प्रकार हुई है। हे प्रभु, मैं आपको इतने प्रिय कैसे हुआ, इसका यथाजथ कारण बताना चाहिए, कृपा करें प्रभु। तो भगवान नृसिंहदेव बताते हैं, हे बच्चे प्रहलाद, बहुत दिन पहले की बात है, आप उस जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किया था, आपका नाम था वसुदेव। उस जन्म में ब्राह्मण होते हुए आप वेद अध्ययन आदि नहीं किया, उस जन्म में तुमसे कोई पुण्य कर्म नहीं बन पड़ा, परंतु केवल मेरे इस व्रत के प्रादुर्भाव से तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इस प्रकार अविचल भक्ति हुई है, और आप मेरे प्रति मेरे इस प्रकार प्रिय बने, मेरा इस प्रकार प्रिय बन सके। हे वत्स, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ है स्वयं ब्रह्मा जी भी इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक पालन किए थे, जिसका फल स्वरूप उन्होंने सृष्टि रचना कार्य कर पाए। ऐसा ही नहीं, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े प्राचीन ऋषि भी इस उत्तम व्रत को पालन करके अपने अपने अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त की हुई है। इसको सुन करके मक्त श्रेष्ठ प्रहलाद ने तुरंत प्रश्न किए, हे प्रभु, आप कृपा करके इस उत्तम व्रत का विधि विधान और किस प्रकार उसका पालन किस महीना किस तिथि किस प्रकार करना चाहिए विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान नरसिंह देव बताते हैं, हे वत्स प्रहलाद, सावधान होकर सुनो, ये व्रत मेरे स्वयं प्रादुर्भाव से संबंध रखता है। अतः ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि में उसका अनुष्ठान करना चाहिए। मैं भक्तों को सुख देने के लिए एक बार भारत की पश्चिम प्रांत में एक स्थान है जिसका पहले कहा जाता था मूल स्थान, वही ओरिजिनल स्थान है, मूल स्थान है, आजकल उनका नाम है मुल्तान, पाकिस्तान में है, पवित्र सिंधु नदी के तटवर्ती प्रदेश है। वहां पर उस जमाने में एक वेद में पारगामी प्रसिद्ध ब्राह्मण जिसका नाम हरित मुनि था, वो निवास करते थे सिंधु नदी के तीर पर, उस नगर में, मुल्तान नगर में। उनके धर्मपत्री के नाम थे लीलावती, उन्होंने बहुत पतिव्रता सती थी। उन दोनों ने धर्मपरायण होकर बहुत लंबे समय तक मेरे लिए बड़ा कठिन तपस्या किए, युग पर युग 21 युग बीत गया उनको तप करते हुए, तब मैं स्वयं उनके सामने प्रकट भया। तो मुझे दर्शन करके उन्होंने कृतकृत्य हुए, मैं ब्रजाचना किया, तो उन दोनों ने बोले, हे प्रभु, जब हम हमको वरदान देना चाहते हैं तो अभी हमको आप जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। तो प्रभु बोलते हैं कि ठीक हो, मेरे जैसा तो कोई ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो ठीक है, आपके इच्छा के लिए मैं ही आपका पुत्र हूं, तो होऊंगा भी। तो इस कारण से आज तक भी भगवान कहते हैं मैं उस क्षेत्र में, उस मुल्तान क्षेत्र में, उस सिंधु तीरवर्ती मुल्तान क्षेत्र में, उस हरित मुनि और इलावती के पुत्र के रूप में, बाल नरसिंह के रूप में उनके गोद में अभी तक भी विराजमान हूं। जो मेरे श्रेष्ठ भक्त उस क्षेत्र में जाकर मुझको उस हरित मुनि और इलावती के साथ मेरे बाल नरसिंह रूप को दर्शन करता है, सिंधु नदी में स्नान करता है और रात्रि में मेरा व्रत को जापन करता है, वो निश्चित रूप से नर से नारायण रूप को प्राप्त हो जाता है। और तो और इस महिमा को, इस मेरे व्रत को, इस क्षेत्र की महिमा को सुनने मात्र से मनुष्य सब पातक से मुक्त हो जाता है। लेकिन आजकल इस कलियुग में इस क्षेत्र जवन से भर्ती हो जाएंगे और बहुत दुराचार पाप चलते रहेगा वहां। फिर भी अद्यावधि उस क्षेत्र में जब नरसिंह देव तत्काल में प्रकट हुए थे वहां, उस समय जो भयानक शब्द हुआ था, अभी भी सिंधु तीर में ऐसे ही शब्द सुनाई पड़ता है, इसे कहा गया, ये पुराण कथा है। हे वत्स, तू इस व्रत की विधि सुनना चाहता था, तो जब इस व्रत की तिथि आता है, व्रत के दिन आने पर मेरे प्रति आकृष्ट भक्त उस तिथि पर, शुभ दिन पर, ब्रह्म मुहूर्त में उत्थापन करके, सज्जा त्याग करके, दंत धावन पूर्वक स्नान शौच तर्पण आदि विधि को ठीक ठीक से करके फिर मेरा मंगल दर्शन करें और मेरे सामने इस प्रकार प्रार्थना करें और इस व्रत का संकल्प करें। मेरे सामने प्रार्थना करें, क्या संकल्प करें? हे मेरे प्रभु, मैं आपका प्रिय करने वाले इस उत्तम व्रत को करना चाहता हूं, हे प्रभु, लेकिन मैं संपूर्ण रूप में अयोग्य असमर्थ हूं, तो आप कृपा करके मुझसे इस आपके प्रिय व्रत को निर्विघ्नता रूप में संपूर्ण करा दीजिए। ऐसे प्रार्थना कीजिए भगवान के सामने और इस व्रत के संकल्प लीजिए। इस प्रकार व्रत में स्थित होकर के अपने इंद्रियों को संयम करें और उस दिन किसी प्रकार मंद कृत्य, मंद वाक्य, गाली गुलज, किसी दुराचारी व्यक्ति के साथ वार्तालाप आदि बंद कीजिए। केवल मेरा नाम जप, मेरे चिंतन आदि में तत्पर रहिए। मध्यान्ह काल आने पर उत्तम जलाशय, पवित्र नदी या कोई शुभ कुंड आदि तीर्थ स्नान में या आदि घर में जैसे संभव हो मिट्टी, गोबर, तिल और अमला के फल सहित पापनाशिन स्नान कीजिए। पाप को विनाश करने वाली इस प्रकार सामूहिक स्नान कीजिए। स्नान के अनंतर संध्या तर्पण तिलक आदि अनुष्ठान कीजिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और घर में जाकर जहाँ हमारे पूजा का स्थान है उस स्थान को गोमय में लिपन कीजिए, गोबर द्वारा लिपें और उसके ऊपर मुरुज आदि द्वारा अष्टदल कमल लिखें, अष्टदल कमल बनाएं और इस कमल के ऊपर पंचरत्न मिश्रित तांबे के कलश को स्थापना करें। विधिवत कलश स्थापन करके इस कलश के ऊपर एक पात्र में अक्षत चावल भर के रखे, चावल भरे रखे। इस चावल भरा पात्र के पात्र में यथाशक्ति स्वर्ण निर्मित मेरा लक्ष्मी नरसिंह प्रतिमा को स्थापित करें और उसके अनंतर पंचामृत पंचगव्य आदि द्वारा मेरे इस प्रतिमा को स्नान कराए। उसके बाद में एक वेद में पारंगत निर्लोभी, जो लोभ से रहित एक ब्राह्मण को आवाहन करके उनको आचार्य रूप में वरण करें और उसको अग्र में रख करके मेरे पूजा अर्चना आरंभ करें। उस समय में होने वाले फल फूल पत्ते आदि के संग्रह करके और अन्य भोग सामग्री को सम्मान करके कृष्ण अगुर दीप आदि को लेकर के षोडशोपचार विधि में मेरा पूजा संपन्न करें और पूजा करने से पहले पूजा के व्रत के अंत तक एक अज्ञान नाश कारिणी एक दीप जाल जला करके रखे, अखंड दीप, ताकि आपके अज्ञान अंधकार को नाश करे। इस प्रकार व्रत को धारण करके व्रत में स्थित होकर के ठीक ठीक से षोडशोपचार से मेरा पूजा संपन्न करे मध्यान्ह काल में। उसके बाद में रात्रि अवधि तक पूरा रात्रि जागृत रह करके और वाद्य कीर्तन आदि द्वारा मेरा नाम कीर्तन पुराण पाठ मेरा जो लीला के योग्य नाना प्रकार के स्तुति प्रार्थना आदि पाठ करे, मेरे कथा सुने, इस प्रकार रात्रि जागरण करे। तत्पश्चात प्रातः काल में पुनर्वास स्नान शौच पूर्वक मेरा यथाविधि पूजन करे। पूजन करके व्रत उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण वैष्णव को आमंत्रित करे, आमंत्रित करके मेरे नैवेद्य प्रसाद को उनको अर्पण करे, उनको भोजन के बाद उपरांत उनको विविध प्रकार की दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट करे। जो दरिद्र मनुष्य है, निर्धन है, वो भी कुछ नहीं करने पाने से केवल मेरा इस उत्तम व्रत में केवल उपवास व्रत करने से ही इस फल को प्राप्त कर लेगा। अगर विधि पूर्वक सब सामान जुटा नहीं पाए और दान तप आदि नहीं कर पाए तो केवल उपवास करने पर भी इस प्रकार दरिद्र जता उनका शक्तिहीन जो है वो भी मेरे व्रत के फल पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। और तो और इस व्रत के कथा को जो श्रवण करता है वो तत्क्षणात् मुक्ति प्राप्त कर लेता है और जो सुकीर्तन करता है वो भी तत्प्रकार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, इस प्रकार इस मेरे जो उत्तम मुझे प्रिय लगने वाली ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी नरसिंह चतुर्दशी व्रत नाम प्रसिद्ध है, जो सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा से लेकर अब तक और आगे पर्यंत कल्प पर्यंत सब जो वेद के पारगामी मनुष्य, जो पुण्य करने वाले जो मनुष्य है, जो सत्यमनिष्ठ है, जो मेरे भक्तों हैं, ये सभी इस व्रत को निश्चित रूप से अनुष्ठान करेंगे, वो करते ही रहते हैं। इस प्रकार व्रत का विधान बताए हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब आज इस वैशाख शुक्ल चतुर्दशी हैं, आज ही व्रत करके इस अद्भुत फल और पराभक्ति को प्राप्त करें नरसिंहदेव का प्रसाद से। तो आज इस नरसिंह भगवान के प्रादुर्भाव हुआ था इस तिथि पर, तो इस कथा के वर्णन के उपक्रम में बोर्ड पर इस श्लोक लिखा गया है, उसको पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अष्टम अध्याय का अष्टादश श्लोक है, इस प्रकार पाठ कीजिए इसको। सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतां अद्भुतरूपम् उद्धृतम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताम् अति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायं न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत् भासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः दृश्यतामति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतामति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् माताजि सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् च भूतेषु अखिलेषु चात्मना दृश्यतामति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं सच विधातुं सिद्ध करने के लिए निजभृत्यभासितम् आपने दास के ही शब्द को प्रह्लाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द की सत्य करने के लिए व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः आत्मा अदृश्यत दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है अनुवाद। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है, भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। वह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का था, इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वह इस खंभे में है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतः हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निर्भ्रांत था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौनते ये प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान है। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानव यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो बेटा, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का था न सिंह का था। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानं जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीजितपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नामधृक जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मीपते प्रभु जय निरंबुज श्याम निरजीमुत सन्निभ जय पद्माधरित्रिभ्याम निसेवित पदाम्बुज। जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानं दासत्वं देहि मे प्रभु दासत्वं देहि मे प्रभु दासत्वं देहि मे प्रभु। श्री नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह। प्रह्लादेश मुख पद्म जय पद्म भृंग। बागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य चवक्षसि यस्यास्ति हृदयं संवित् तं नृसिंहं अहं भजे। तव कर कमल वरे नखमद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशव धृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय जगदीश भगवान की, समेत गौर भक्तवृंद की। तो इसी प्रकार जैसे आप सुने केशव धृत नर हरि रूप, भगवान केशव ने अनेक अनेक अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं, निज भृत्य भाषितं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान निज भृत्य, निज मतलब खुद आपका, भृत्य मतलब आपका नौकर जो उनके जन है, उनके दास है, उनके बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए। देखिए मैं बार बार भी कहता हूं, भगवान अभी तक जो भगवत्ता उनका है, जो भगवान रूप में है, केवल ओनली वन एजेंडा उनका है, क्या है? केवल भक्तों को सुख देने के लिए, और कोई दूसरा नहीं है, एक ही काम है भगवान। तो इसलिए ये क्यों नहीं करेंगे? कुंते ये प्रतिजाना प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ही घोषणा कर दो डंका बजा करके कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। अर्जुन बोला, क्यों प्रभु? हे आप स्वयं भगवान परात्पर ईश्वर परमेश्वर है, आप क्यों नहीं ऐलान कर देते, मुझे क्यों बोल रहे डंका बजाने के लिए? बोले अर्जुन, मेरा बहुत बदनाम हो चुका है, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, इतिहास में हिस्ट्री में मेरा बदनाम बहुत लिपिबद्ध हुआ है, ऐसा बात नहीं, सभी जानते हैं बड़े बड़े लोग विद्वान कि मेरा बात में कोई दम नहीं है। मैं हूं तो भगवान जरूर, लेकिन अहंग भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवद्दिज। हे ब्राह्मण, मैं भक्त का द्वारा संपूर्ण रूप पराधीन हूं, अस्वतंत्र हूं, मेरा स्वतंत्रता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा बात का क्या दम है? महाभारत युद्ध से पहले तुम ही था ना, तेरा सामने ही वचन लिया था, मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा युद्ध में। दुर्योधन उसको सुनकर बोला, तेरे से निहत्ता लेकर मैं क्या करूं, तू लड़ाई नहीं करेगा, अस्त्र नहीं पकड़ेगा, छोड़ो तेरा सैन्य दो मेरे, तुम जाओ। बोला, मैं ड्राइवरी गिरी करूंगा तो जाने दो, है ना? नहीं, मैं प्रतिज्ञा क्या था, आप और दुर्योधन दोनों ही थे ना, हाँ, तो फिर क्या हुआ? विष्णु बोला, अच्छा आज देखूंगा, मेरा बाण हर लिया तूने छल करके ना, पंच बाण बनाया था बड़ा मेहनत करके, रात में ऐसा छल किया, अर्जुन को दुर्योधन का मुकुट पहना करके ले लिया हरण करके, अच्छा आज देख लूंगा, चाहे तुम्हारा बात रहे तो मेरा बात, आज मैं रहूं नहीं तो पांडव रहे, नहीं तो तेरा बात की पराभव हो जाए। तो भगवान ने बोले, ठीक है, तू जब तेरा बात लेता है कि मुझे अस्त्र धारण करके रखेगा तो वही कर दूंगा, उसमें क्या बात है, ना अर्जुन को थोड़ी मारने दूंगा ये नहीं करने दूंगा, मेरा बात को तो सोवर तोड़ सकता हूं मेरे भक्तों के लिए, एक बार क्या है, तू क्या, तेरा बात भी रहे, अर्जुन की रक्षा करूंगा, मैं अस्त्र धारण कर लूंगा। तो ऐसे ऐसे कई बार मैं किया हूं, तो इसलिए मेरे जवानी में कोई दम नहीं है, कोई विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए तू ही बोल दो मेरे ओर से। अब तुम बोल देने से जो विद्वत जन है वो देखेंगे भगवान के भक्त ऐसे घोषणा करता है, भगवान किसी कीमत में उसको मिटाने नहीं देंगे, उसको अवश्य ही रक्षा करेंगे। ये सदा सर्वदा वेद धर्म शास्त्र सब एक साथ में उद्घोष करते हैं कि भगवान अपने भक्तों का वचन को कभी भी मिटने नहीं देते हैं किसी कीमत से। तो इसलिए आप ही घोषणा कर दो, कुंते यह प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी हो ही नहीं सकता। तो यहां एक तो भक्त सम्राट प्रहलाद महाराज नन्हे से 5 वर्ष के बालक के रूप में खड़े हैं, तो उनके पिता श्री दैत्य महाराज हिरण्यकशिपु ने, अब प्रसंग इसी प्रकार है, प्रसंग में चलिए कि सभी जानते हैं, अब मैं कथा नग में कहा था कि प्रहलाद जी ने खुद ही भगवान नरसिंहदेव से पूछे, हे प्रभु, मेरा ऐसे अद्भुत भक्ति आकृति कैसे हो गया, मैं आपका ऐसे भक्त कैसे बन गया बचपन से ही? भगवान बोलते, तेरे अंदर कोई गुण नहीं था, तू केवल मेरा व्रत किया इसी कारण से हो गया, पता नहीं आप लोग आज व्रत करेंगे इसे हो भी जाएंगे इस जन्म में अगले जन्म में। लेकिन एक और कही कथा मिलता है इसे, भागवत में इसे कथा आता है अष्टम स्कंद के बड़ी महाराज चरित में, आप कभी पढ़ेंगे नग से उसमें है, जब भगवान वामन बलि के सामने जा करके कपट रूप में बोना ब्राह्मण बनकर भीख मांगने के लिए गए, भीख को मंगा ब्राह्मण के रूप में जाकर जब उनको बोलते हैं तो वेद वाचन करते हैं, तो बड़ी देखते हैं कि बहुत चमकीला ब्राह्मण है, इतने बड़ी ताजा ब्राह्मण, बिल्कुल छोटा सा जवान लड़का है, बड़ा अच्छा पाठ करता है वेद, क्या बात है, कुछ चाहिए। तो ऐसे जब मैं आपको सब प्रभावित कर रहा था मंत्रोच्चारण करके, अब तुम आकर के बोला ब्राह्मण मुझे संतुष्ट किया, क्या चाहिए दान मांगो हैं? अब पूरा दान के लिए संकल्प कर बैठा, तो मैंने आपके प्रशंसा करने लगा। वामन देव ने अब सबसे पहले दान क्या चाहते हैं ये नहीं बताए, पहले उनका थोड़ा प्रशंसा की। ये नीति है जो दाता को, जो ग्रहिता, थोड़ा प्रशंसा करना चाहिए, ये नीति है, करना चाहिए। तो प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा करते करते कहते हैं क्यों नहीं आप ऐसा कहेंगे, तुम क्या तुम्हारे वंश में तुम्हारे दादा परदादा सभी ऐसा गुण के हैं, क्या बताऊं, सभी ऐसे दानी थे, ऐसे श्रेष्ठ थे, ऐसे वीर थे, ऐसे थे, ऐसे बोलते बोलते यहां तक बोल देते हैं कि तेरे दादाजी परदादाजी जो हिरणाक्ष था, हाँ, जब टांकर ले गया पृथ्वी के रसातल में, तो मेरे से लड़ाई किया, उसको मार दिया, तब उनका भाई हिरण्यकश्यप ने मेरे साथ ऐसे लड़ाई किया, मैं तो तंग हो गया, मैं हार रहा, मैं तो उसको अंदर प्रवेश कर गया। हिरण्यकश्यप ने, आप जानते हैं जन्म से ही तो थे ही भगवत पार्षद ना, जन्म से जब जन्म नहीं हुआ था, गर्भ में प्रकट हुए दीतिका गर्भ में, तब चारों ओर से ऐसे अशुभ शकुन हुआ, उल्का पात रक्त का वर्षा और क्या क्या नहीं हुआ, उसको देख करके तो बोलेंगे क्या प्रलय अभी हो जाएगा ना, क्या ये सूचना, इसे क्यों अद्भुत अपशकुन क्यों होता है ऐसे महादत्य। जब जन्म हुए तो पृथ्वी कंप गया, इतने महाबलशाली थे, और जन्म से ही उनको तो देवता लोगों को ऐसे ही दृष्टि आंख दृष्टि है, तो ये क्या करेंगे, मनुष्य की तो कोई धास भी नहीं गिनना करते, मनुष्य क्या कीड़े मकोड़े के हिसाब में भी नहीं है, देवताओं को तो खातिर नहीं करते, इतने बल था उनके, अमाप बल था, तो ऐसे ही मार पीट करके घूमते थे। लेकिन अब हिरणाक्ष का सहस्त्र बाहु था, ऐसे घूमते फिरते जा कि जबरदस्ती धरती का जो उनका जो ये है, तो धरती को मार पीट कर खींच लिया उनके, बताओ उनके जो लाइन है माध्याकर्षण में जो टिका हुआ है धरती, उसको पीट पाट कर खींच के सर में लोड करके ले गए, रसातल में लेके लोड करते, कोई चोरी करे, कोई यहाँ के कुछ पैसा रुपया कुछ ले जाए, सारे पृथ्वी की चोरी कर ले, संपूर्ण सागर पर्वत सहित पूर्ण पृथ्वी को उठा के ले गया, ऐसे ही समर्थशाली चोर था, ऐसे बदमाश था, वो कितने शक्ति उनका होगा। तो उनका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, वो भी कोई कम बड़ी था, तो भगवान ने यज्ञ वराह रूप धारण करके उनको मारे, उनको बद्ध किए और पृथ्वी के लाकर फिर आपने यथास्थान में टिकाए। तो जो अपने भाई का मर्डर सुन करके वो बिल्कुल कंप कंप आ गया गुस्सा में, एक बार गुस्से में सबको सांत्वना करके जैसे गदा लेकर दौड़ पड़ा। अब मारे और किसी को तो खातिर नहीं था, देवता भगवत वही बाल में खातिर नहीं करता था, सीधा बोला विष्णु मारा है, विष्णु को मारता, ओ विष्णु लोग को दौड़ा सीधा, इस ब्रह्मांड में शुद्धदीप है, सीधा शुद्धदीप दौड़, वो सब लोग में जा सकता था, इतने पावर था, शुद्धदीप में जाकर गर्जना तर्जना करे, गदा घुमा कर विष्णु को ढूंढा, भगवान विष्णु देखे हो तो बिल्कुल बहिर्मुख होकर गर्जना तर्जना करके आ रहा है, और जाने से पहले उसको पता चला विष्णु ने मेरे भाई को मारा, सारे मंत्री संत्रियों को सरा सेनापति को बुलाकर ऑर्डर दिया, ये जितने ब्राह्मण है, जितने तपस्वी है, जितने जगह सब भगवान के चेला है, उनको सब मारो, सब गो ब्राह्मण अहित करो, सबको ध्वंस करो, गाय ब्राह्मण तपी सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो, कोई यज्ञ भगवान को नहीं कर सके, ये ऑर्डर दे करके स्वयं चला शुद्धदीप से बोला मार उनको, उसको मार के आऊंगा अभी देखता हूँ, इतने गुस्सा हो। भगवान बोले चलो मुझे मारेगा क्या नहीं मारेगा वो न करे, लेकिन मेरे भक्तों को से मार डालेगा, उनको लगा दिया, पूरा एजेंट लगा दिया, वो तो बध करते ही शुरू कर दिया लड़ी, जहां देखो गाय बछड़ा ब्राह्मण सब मारते रहते हैं भक्तों को, अब मेरे से पीछे पड़ गया आखिर, अब क्या करूं, ओ देखता नहीं तो भगवान ने स्वयं वामन देव कहते मैं तभी, जब भगवान बोलते इससे गुस्सा होकर गदा घुमा मेरे ओर दौड़ कर आ रहा था, तो मैंने तुरंत देखा क्या करूं इसे राक्षस से बचने के लिए, सारे मेरे भक्त ब्राह्मण को मार रहा है या क्या करूं, तब मैं छोटा मक्खी के रूप धारण करके उनके मुख का अंदर होकर उनका अंदर चला गया। भगवान भी इसे खेल करते हैं बताओ, डर गए, बोलते मैं डर के मारे उनके अंदर घुस गया, वो देखा कि बहिर्मुख बाहर ही उनका इंद्रिया सारे बाहर को ढूंढ रहा था, अंदर तक भी देखा ही नहीं, मैं उनका अंदर घुस के बैठा, थीर होकर के अंदर कभी ढूंढा ही नहीं, सारे बाहर छंग मार लिया, कोना कोना समुद्र पाताल पर्वत सब, लेकिन कोई था नहीं, मैं तो उसके अंदर बैठा हूं, वो बाहर ढूंढता रहता है कहां मिलूं, तो उनका चुपचाप बैठा अंदर। अरे भगवान जहां बैठेंगे उस स्थान कैसा बन जाएगा, पवित्र बन, इसमें क्या बोलने का है, अरे जिसका नाम उच्चारण मात्र से आप इतने पवित्र बन जाते, मुख्य भाजन हो जाता है, वो स्वयं ससरी जहां अधिष्ठित हो जाएंगे तो जागा को ही पाप रहेगा इधर, तो उनका अंदर तो स्वयं जाके बैठ गए, तो उनका अंदर अंतकरण बिल्कुल पवित्र शुद्ध पूत कर डाले। तो बहुत ढूंढांड करके परेशान होकर के आया, डिक्लार कर दिया विष्णु है ही नहीं, मर गया, चलो मेरे डर के मरे ऐसे ही कोई सुसाइड कर लिया होगा, वो आके बंद कर दिया। वो आकर सारे मंत्री संतरी सेनापति बोला बोला बंद करो, इसको क्यों मारेंगे बिचारे को, छोड़ दो उनको, विष्णु ऐसे ही मर गया और क्या, छोड़ दो उनको। तो भगवान बोले चलो मेरे इसके करने से मेरे भक्त ब्राह्मण तो बच गए, नहीं तो सबको एक एक करके मारता हूं। तो उनको बंद कर दिया, बोला वो क्यों मारते हैं, छोड़ दो उसको। तो अब बैठ के सोचने लगा सब विष्णु सचमुच सुसाइड कर लिया, मर गया, कोई है ही तो नहीं। तो आपने आपको घोषणा कर दिया विष्णु के नाम, जहां जहां सब वेद में शास्त्र में भगवान विष्णु का यज्ञ भक्त नाम था, सब डिलीट करके अपना नाम लगा दिया इधर, सारे प्रोग्राम डिलीट करके अपना नाम छोड़ दिया। बोला भगवान विष्णु नहीं, सब हिरण्यकशिपु वाच, सब हिरण्यकशिपु, जहां जहां विष्णु का नाम है सब डिलीट करके उसका नाम चढ़ा दिया। चढ़ा तो दिया लेकिन अंदर में होकर बैठे है ना, मन नहीं मानना है। बोला सच में वो डिलीट हो गया, मन में भय आता है, विफलता आता है, हाँ कंपमान करता है लेकिन अंदर भय रहता है, करेगा क्या, अंतर्मुखी तो है ही नहीं, बाहर देखता है गर्जना तर्जना करके लेकिन अंदर मुखी तो हुआ ही नहीं, क्या अंदर को देखता नहीं। हम सभी का ही दशा, सारे इंद्रियां बाहर की काम देते हैं, ये करते हैं, अंदर कभी देखे ही नहीं ना, देखते बाहर के चीज, सुनते बाहर के चीज, खाते बाहर का चीज, गंध लेते बाहर का चीज, छूते ही बाहर का चीज, सारे इंद्रिया बहिर्मुखी, अंतर्मुखी हुआ ही नहीं, इसलिए हमारा ये दशा है। जब तक अंतर्मुखी नहीं हुए, भगवान भगवान के भक्ति के पल्ले नहीं पड़ने वाला है प्रभु जी, तो हिरण्यकश्यप की ही दशा। तो ऐसे बड़ा व्यतिव्यस्त हो रहा था, सोच विचार का बड़ा बुद्धिमानी था ना, खरी ब्रह्मा जी का पोता तो है ना, तो सोचा ये सारे जो भगवान के लोग बनते, भगवान सब तपस्या कर करके बल प्राप्त करते हैं, तप करना होगा तभी उसका चैलेंज लूंगा, ऐसे तो विष्णु बन चुका हूं, नाम तो डिलीट कर चुका हूं सारे जगह को है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, तपस्या कर डालो। तो तभी शादी तो कर ही डाला था, और उनके जो पत्नी थे वो कौन थे मालूम है ना, कयाधु तो थे, मैंने किसका पुत्री थे, कौन थे उनका संबंध, कोई ये सब नहीं जानते हम। वो तानपाद के प्रिय पुत्री थे, अब हिसाब लगाओ, जब तानपाद के पुत्री उनके पत्नी हुए तो उनका जो लड़का होगा उनका सगा मामा कौन होंगे, भूल गए, ध्रुव महाराज, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज है ना, आप नहीं बोलते। भागवत में ये कहा गया है बेन महाराज के प्रसंग में, जो अंग बेन महाराज बड़ा बदमाश निकले, तो अंग महाराज ऋषियों को पूछते, हे ऋषिवर, मैं इतने बड़े तपस्या करके इतने बड़े शुद्ध पुराण महाराज हूं, मेरे लड़का इतना बदमाश, ऐसा बदमाश कैसे निकला। तो ऋषि लोग बोलते महाराज, नारायणंग मातुआ कर्म, जो लड़के पैदा होते हैं ना वो सारे स्वभाव रूप से अपने मामा का गुण कर्म लेकर आते हैं, नारायणंग मातुआ कर्म, ये सारे मामा का गुण और कर्म का स्वभाव लेकर आते हैं लड़के, और लड़की अपने जो पीसी होते हैं ना, माने पिताजी का बहन, उनका गुण को लाती है। तो ये बुआ, अब हिंदी में बुआ कहते हैं, तो बुआ का गुण लड़की लाती है, पिताजी का बहन, और लड़का लाता है माताजी का भाई का गुण का लाता। तो अब ये तो इसे प्रमाण हो गया, अरे उनका मामा श्री कौन थे, भक्तराज ध्रुव, तो उनका गुण कौन सा बड़ी बात है, तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई होता है इधर भी। तो छोड़ो, दूसरा फॉर्मूला में देख लीजिए, तो कयाधु के साथ गर्भ संस्थान करके कयाधु को समझा बुझा कर, कयाधु अब मैं जा रहा हूं मंदराचरण तपस्या करने के लिए, विष्णु के सामने मेरा चैलेंज लेने के लिए तप करना पड़ेगा, ठीक है, पुत्र को ठीक से गर्भ को पालन कर रखना, मैं जा रहा हूं। गया तप करने के लिए मंदराचल में, जा करके एक पैर में खड़ा होकर के घोर तपस्या करने लगा, चाहे ब्रह्मा को शिव को चाहे जिसको तपस्या करे करने लगा, अब कई युग तपस्या करने लगा, यहां तक कि वर्णन आता है भागवत में, तपस्या करते करते इतने कठोर, बड़े ढीठ होते हैं राक्षस लोग, बहुत टॉलरेंस होता है उनके, बहुत शक्तिशाली, इतने घोर तपस्या किया कि इतने युग तक कि उनका शरीर सब सड़ सड़ करके गल गया, खाना पीना तो छोड़ो, सांस पास बंद कर दिया, सारे शरीर गल गया, हड्डी में केवल खड़ा था, हड्डी भी गल गया, केवल सांस भर में प्राण वायु में टिका हुआ था, और इस जगह पर कई युग बीत गया, दीमक के धेरे सब माफी माफी सब बन गया, बिल्कुल अदृश्य सा हो गया। कई युग के बाद ब्रह्मा जी आए, बोले ये मेरा आसन टलमल कर दिया तपस्या में, वो क्या करूं, ब्रह्मा जी विवश होकर आना पड़ा। आपने मंत्र कमंडल लेकर ब्रह्मा जी आकर ढूंढने लगे कि कहाँ है ये तप कहाँ से करता है। ढूंढ ढूंढ के बड़े परेशान में मैंने प्लेसमेंट किए, निकाले किस जगह पर है, अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, खाली स्थिर बना कि इस जगह पर है तपस्या, इस जगह है। जो भी निकाल करके फिर आपने मंत्र तंत्र पानी फानी छीन छांच करके फिर उनका रूप प्रकट करवाए, नहीं तो रूप ही नहीं था, शून्य रूप में इतने महान तप किया था, ब्रह्मा जी परेशान हो, तो दिव्य रूप प्रकट हो गया, बिल्कुल दिव्य रूप देव रूप। तो दर्शन दिए ब्रह्मा जी, बोले बेटा मांगो, मैं जानता हूँ बड़ा लिस्ट पढ़ागा, ठीक है मांगो, क्या करूँ, आ ही गया। तो वर मांगा, हे ब्रह्मण्य देव, अब मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा बोले बेटा मैं ही खुद मरने वाला, जब मैं ही मरने वाला खाता में हूँ, तुझे किसे बनाऊ बेटा, ना अच्छा ना कुछ और मांगो उस प्रकार ना, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप महा बहुत चालाक तो था ही, पढ़े लिखे भी था, तो अमर का अल्टरनेटिव, जो उसका अल्टरनेटिव माने जो जो लिस्ट बुरा लगा दिया, अमर होने का नहीं कहने से उसका दूसरा रूप जो है, ऐसे ना मरू, ऐसे ना मरू, ऐसे ना मरू, ऐसे ना मरू, लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया। बोलते बोलते यहां तक बोल दिया, आपके बनाए हुआ सृष्टि में किसी प्रकार के जीव के द्वारा मैं ना मरूं, किसी दिन में, किसी तिथि में, ना सुबह ना शाम को, दिन में, रात में, जल में, स्थल में, बड़ा लंबा लिस्ट बना दिया आकाश में। ब्रह्मा जी हड़बड़ा कर बोले हो सस्ती बात, बोले ठीक है ठीक है, ठीक करके चले गए। और क्या करे, अभी विवश थे, बर देना ही पड़ेगा, देख चले गए। और एक तो बलवान था ही, उसके ऊपर तपोबल दोबारा बढ़ गया, और कहां जाए। जैसे नीति वाक्य में कहते हैं, जब सांप को तो विष ऐसे ही होता है, और कोई सांप को लाकर प्रणाम करेगा, पूजा करके उसको दूध पिलाएगा, दूध की थाला रखा, तो क्या होगा, सांप दूध पिएगा, पी करके उसका वो समन हो जाएगा, उसका विष दुगना वृद्धि होगा। वही क्या ब्रह्मा जी के तप का वरदान प्राप्त करके और डबल राक्षस गुण वृद्ध हुआ होगा, डबल हिसाब से। और ये क्या मेडिसिन आता है आजकल, डबल एक्शन ना, क्या बोलते डबल एक्शन आता ना, वैसे डबल एक्शन में काम किया है। तो आया और देवताओं को इसे चढ़ाव करके स्वर्ग में, तो इसे जीन लिया, भागो यहां से, सब सब मेरा काम करवा कर, सारे देवताओं को अपना ड्यूटी में एंगेज कर दिया। यहां तक नारद जी बोलते मुझे भी ड्यूटी लगाना पड़ता अखंड कीर्तन में, मेरा भी शिफ्ट दिया था 3 घंटा, मैं भी जाकर कीर्तन करता था। हाँ, उनका ड्यूटी लगा दिया था। करे क्या, इतने मारपीट करके सब सवास कर रखा था, सब इंद्र चंद्र वरुण सब ड्यूटी लगाते थे उनका। सब ऐसा तक था, भागवत वर्णन है, जब बैठेगा देखा अभी गर्मी आता है, तो गर्मी आया तो बोला गर्म लगता है, तब ऑर्डर देगा ए गर्मी का ऋतु अभी सस्पेंड, अब ठंडी का सीजन आ जाए तो आना ही पड़ेगा। इमीडिएट ऋतु परिवर्तन अपने हाथों में, कलम चलाए तो ऋतु परिवर्तन हो जाएगा अपने हाथ में, प्रकृति को कंट्रोल किया था। उस खेत में पानी अभी देने का था, वो किसी बोलते खेत में पानी होता है, और पानी कहाँ चलता है, नदी, कोई डैम फैम बना नहीं था, डैम का बुद्धि उन्हीं से निकला है, जो आजकल डैम बनाता है ना, नदी बंधन योजना, ऐसे हिरण किसी की बुद्धि है, और डैम खुद नहीं करता था, वही नदी कटता है, एक नदी इधर से बंद हो इस तरफ चलो, तो बेचारा यहाँ तो केनाल की तरह इस तरफ खेती होकर निकले, अब क्या करे, उनका बात मानकर ऐसे चलता था। वो खेती में कोई जोतता नहीं था, ऑर्डर देता इतने क्विंटल धान, इतने क्विंटल, जो जो लिस्ट बनाता इतना पैदा करो, उनका बाप करना ही पड़ेगा उसको, बिना कुछ किए बीज बोने भी देना ही पड़ता था। ऐसा ही था शक्तिशाली, बताओ, प्रकृति के इसे अधीन करके रखा था, देवता प्रकृति सब कुछ, इतने प्रभावशाली दैत्य था, इतने महापराक्रमशाली दैत्य का गड़बड़ हुआ क्या, उनके गर्भ में तो बैठे थे, उनके अंदर में कौन बैठे थे, भगवान पहले से बैठे थे, गर्भ के द्वारा उनके शक्ति से संचारित हो गई, तो कयादु के गर्भ से भगवत स्वरूप, भगवत शक्ति संपन्न जो बेटा था वही तो वही निकले ही, शुरू से ही भगवत समते हैं, उनके हिरण्यकश्यप के अंदर बैठे हुए थे वो निकले, इसमें ऐसे ही सगा मामा थे ही, उसी फॉर्मूला में लागू होता है। तो जो पैदा हुए, लेकिन ये भूल गया, पैदा नहीं हुए थे, वो तो बंदराचल चला गया था तपस्या करने के लिए, अब कयादु के गर्भ बढ़ रहा था, तब उसी समय में जो बहुत ज्यादा देर किया तपस्या में, इंद्र देख रहा था, पूरा डाटा ले रहा था कि क्या कर रहा है, अब खड़ा हुआ, अब हुआ, अब तो बिल्कुल पिघल गया शरीर, अब लेट होगा आने में, चलो चढ़ाव करते हैं। ये पता नहीं हीरे जो उनके पत्नी का गर्भ है, दूसरा सेकंड हिरण के सुबह आना जाए, ये तो ये कि इतना भारी पड़ता है, दूसरा हो जाए तो और क्या करा पता नहीं, तो इसलिए उसको ही मार दे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो कयादि को मारने के उसे गर्भ खत्म करने के लिए निकला, और जाकर अस्त्र शस्त्र लेकर के उनके घर में चढ़ाव किया, निहत्ता कयादु महारानी थे उनको अरेस्ट करके खींचे ले जा रहा था, बोला उनको नाश करने के लिए मारने के। वो बेचारे एक निहत्ता स्त्री है, बड़े काकुति मिनत करे रोह करके, नहीं इंद्र क्यों छोड़े, घिसड़ पिछड़ करके ले जा रहा था उनको। तो रास्ता में सौभाग्य क्रम में नारद जी भेंट हुए। नारद जी बोले हे इंद्र, देवराज क्या कर रहा है ना? क्या देवराज पता नहीं, आप भी ड्यूटी लगा रहा है, 3 घंटा अखड़ कीर्तन में लिस्ट है, पता नहीं अब मुक्त कैसे होंगे, ड्यूटी से छोड़ना ना? हाँ छोड़ना तो है, लेकिन हाँ यही सेकंड हिरण कैसे निकलेगा भाई, उसको अभी से मार देना चाहिए, नहीं निकल पड़े तो फिर बस की बात नहीं, तो इसलिए अभी मार देना चाहिए गर्भ से। तो नारद जी बोले इंद्र तू दुर्बुद्धि है, तुझे पता नहीं उसे गर्भ में कौन है? हाँ कौन है आपको जानते होंगे, हम तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, हमको कहाँ ये सब करना पड़ता है, आप हिसाब किताब करते हैं तपस्वी, हाँ बताइए कौन है, बताओ, आपकी बात में विश्वास करता हूँ। हाँ बता नहीं, उनके अंदर तो महाभक्त विष्णु भक्त हैं, बहुत बड़े महापुरुष महाजन है, हैं हाँ बहुत बड़े महाजन महापुरुष विष्णु भक्त हैं, वो अवध्य उसको मार ही नहीं सकता तुम्हें। ऐसा सुन करके नारद जी के ऊपर पूर्ण विश्वास था देवराज का, सुनते ही कोई क्वेश्चन नहीं पूछा प्रमुख करने के लिए, इमीडिएट छोड़ दिया, रिलीज किया, रिलीज करके तुरंत कांप करके प्रार्थना किया, कयादि को क्षमा याचना किया, माफी मांगा, माफी मांगकर दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा किया, पैर पकड़ करके परिक्रमा करके दोष क्षमा करके चल दिया। वो तो चल दिया देवराज माफी मांग करके, बोला बड़ा भूल हो जा रहा था, बचाइए बचाए बचा दिया, अपने रक्षा की मुझे, बाह रे बाह साहब विष्णु भगवान भक्त। अब क्योंकि इंद्र को पता था, एक बार अनजान में जमराज ने अपने दूत को भेजे थे, अजामिल की कथा जानते हैं ना, उनको बेचारे पता नहीं था कि भगवान का नाम लेने से ही ऐसे ही बिना कीमत से सब पाप नष्ट हो जाता है। वो तो लिस्ट पकड़ कर आए थे, पूरा कंप्यूटर प्रिंट आउट लेकर आए थे पूरा लिस्ट का, कोई पुण्य था नहीं सारे पाप का ब्यौरा लेकर आए थे, वो आकर बांध बूंद कर खींच रहे अजामिल को लेने के लिए, लेकिन वो मरते दम से वो नारायण पुकार दिया था। उनका लड़का पता नहीं को तब से अब से नहीं किया, बदमाश लड़का था, लेकिन नाम था उसका नारायण, तो नारायण फुकर ले, एक बार नारायण का नाम ले लिया, ऐसे नारायण नाम ले लिया, और इतने में ही ये बेचारे फांस बांध चुके थे, खींच रहे थे, पता नहीं टपक पड़े विष्णु दूत, अब पकड़ करके देव मारे न मारे, अरे तुम कहां से, अभी तक सर जिंदगी में हम ऐसा कभी देखे ही नहीं, जमदूत भी कभी वापस आए, हमारा कोई विरोधी आ जाए, हैं धर्मराज हमको भेजते हैं जहां जाए अमोघ, तो उनको खींच कर लाते हैं, आत्मा को पापी है, पूरा पाप का लिस्ट प्रिंट आउट लेकर आए हैं, दिखा दिए सामने, आप कहां से टपक पड़ भेगा ना, अरे मूर्ख जन आपको पता है नहीं, हाँ सब प्रिंट आउट लेकर आए, मानता हूँ सारे ठीक है सारा पाप है, लेकिन अभी कुछ नहीं पाप ने, कैसे नहीं है, अब हम आए जमराज छोड़ी बोले, अब भी ऐसे क्षण में हम आए पाप के लिस्ट लेकर के सारे पापी है, आप बोलते पाप सब नहीं है ना, यही तो मूर्खता आपका, आप जानते ही नहीं क्या हो गया ना, अभी अभी नारायण अपना लड़का, नारायण थोड़ी बोला, वो अपने लड़का को पुकार रहा था, लड़का को तो पुकार रहा था, लेकिन नाम किसका था ना, लड़का का नाम था ना, लड़का का नाम था लेकिन वो विष्णु का नाम भी था ना, तो क्या होगा ना, सारे पाप गया, अब नहीं ले सकते आपने, अरे ये कौन सा बात है। तब तो उनका बड़ा जुक्ति तर्क हुआ, बोले बताओ पाप की संज्ञा बताओ, पुण्य की संज्ञा बताओ, बड़े चर्चा हुआ उनका, बड़ा डिबेट हुआ, अब विष्णु दूत का और जमदूत का डिबेट हुआ, और डिबेट में वो कहाँ टिक पाएंगे, वो हार गए, वो बोले जाके आपके बाप दादा को आपके गुरु को पूछ करके आओ, हाँ पहले हाँ शास्त्र में देखो, शास्त्र में नहीं पढ़े तो दोबारा पूछो उनको, नहीं तो अमेंडमेंट करो आपका शास्त्र जो है इसमें गलती है करके आओ। तो बेचारे मारे गए, बोले अभी तक मुंह में चुना काली नहीं लगा था, पहली बार ऐसे डिफीट हुआ, तो जा करके चुनौती दिए, बोले चुनौती क्या देंगे, अपना रेजिग्नेशन लेटर पहले दिखाए, बोले सार पहले बार ऐसे हुआ, रिजाइन दो नहीं तो बताओ ये क्या है, और कोई दूसरा धर्मराज कैसे निकला, ये दूत आ गए ऐसे ना, कौन है क्या घटना, जमराज भी घबरा गए, ऐसा क्या हो, भले नहीं ऐसे ऐसे रूप था, शंख चक्र गदा पानी चार लोग आड़े, ऐसे डांट मारे हमको, मारे निपटे बच के मारे भाग के आए, बड़ा जुक्ति किए सारे, आप जो हमको सिखाए पढ़ाए थे सारे फिलोसफी बताए, लेकिन कोई काम नहीं किया, वो ऐसे हमको परास्त कर भेज दिए, वो बताते हैं कि उनका लड़का नाम नारायण लिया, इसे सब सुन हो गया। तो भगवान सुने कान पकड़ लिया, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा मैं आपके भूल गया था ये बताने के लिए, अब मैं दोबारा अमेंडमेंट करता हूँ, अभी से बताता हूँ, कोई बाई मिस्टेक अगर ऐसे नारायण का नाम ले ले, तुम जाते जाते रास्ते से वापस आए बेटा, नहीं तो मेरा भी हालत खराब हो जाए, नहीं जाना उसके पास। तो जो जमराज उनका आईने को अमेंडमेंट किए, तो इंद्र तो सब जानता था ना, देवराज है ना, सारे देवता गोष्ठी सब आईने संशोधित होता, बोला मैं फिर उसको मारने वाला था, अरे बाप रे बाप, चलो बचा दिया नारद जी, भागे। लेकिन कयाद बेचारा रास्ते घाटे वो राजमहल से घटा के ले, अभी रास्ते में कहाँ छोड़ दी बेचारी निहत्ता स्त्री, कहाँ जाई, पति है ही नहीं, घर कहाँ रुका, कहाँ छोड़ दिए रास्ता आधे में, कहाँ जाएगी, रोल करूँ। नारद जी अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, कहाँ रहूँ। नारद जी बोले अब देखो, एक तो स्त्री है, दूसरी गर्भवती है, तीसरी न्यास्त्री है, तो साधुजनों को तो उनको आश्रय देना ही चाहिए। तो उनको ले गए, यद्यपि ब्रह्मचारी श्रेष्ठ थे लेकिन अब कयाद माता को ले गए, लेकर के अब आप जानते हैं उनका कोई आश्रम पसंद होता ही नहीं। नारद जी को भी साप लगा है दक्ष का, इसलिए कोई उनका रेसिडेंसी नहीं है, रेजिडेंस है नहीं जरूर, लेकिन जहाँ दक्ष का साप भी काम नहीं करता वहाँ उनके रेसिडेंट बना रखे, मतलब यहाँ नारद कुंड के पास वृंदावन में उनका नारद दक्ष का साप भी काम नहीं करता। ये भगवान के निज घर में थोड़ी साप फाप काम करेगा, यह रोल काम नहीं करता है। तो यहाँ अपना रेसिडेंस बना के रखे हैं, तो यहाँ ले आए, ले आए वहाँ रखे, बोले यहीं रहो, फर्स्ट क्लास यहाँ रखो, और वो यहाँ खाने पीने कोई कमी नहीं, अब बढ़िया सुंदर वातावरण है, वृंदावन ब्रज है ही है, यहाँ तो सब ऐसे ही भगवान के चित्त में रहते हैं, रम के रहते हैं। तो भगवत कथा उनको सुनाते थे, भगवान तो ऐसे ही, नारद जी तो भक्त समझे, भगवत कथा करते हैं, कथा सुनाते थे, और अंदर में हिरण्यकशिपु उस कथा को श्रवण करते थे। कयाद सुने ना सुने वो तो सुनते थे। तो जो भी हो, और जन्म से उनका भक्त थे ही। तो हुआ क्या, जब प्रहलाद जी का प्रकट हुआ, उनका और तीन भाई थे लेकिन उनका जो प्रकट हुआ, तो उनका तो मति जन्म से ही सिद्ध रूप में भगवान में लगता था, और किसी में लगता ही नहीं था, निसर्गी की भक्ति था उनका। तो हिरण्यकशिपु देखता था राजभवन में, बिल्कुल बड़ा अनास में पाल पुल रहा था, सुंदर दिखने में इतनी अनिंद्य सुंदर था, अब बड़े राजा हिरण्यकशिपु बहुत उनको अनुराग भी करता था, बड़े स्नेह करता था, तो स्नेह करता था। फिर उसको बोला भाई रॉयल स्कूल में एडमिट किया, स्पेशल स्कूल में पढ़ा लिखा करने के, राज लड़का है, राजा बनेगा अभी, यही सबसे मेरा बड़ा लड़का है और बड़े सुंदर है, सब गुण संपन्न है, उसको राजा बनाना है। तो उसको एडमिशन कराया, तो उनका जो स्पेशल रॉयल स्कूल था, राज विद्यालय था, जिसमें शुक्राचार्य का यूनिवर्सिटी था, लेकिन वो गए थे कहीं टूर में, तो उनका दो लड़के पीएचडी थे दोनों, तो दोनों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया था, तो उनमें एडमिशन कराया। तो संढव और अमर का, दोनों पीएचडी, संढव पीएचडी अमर का, सो डॉक्टर होल्डर वो थे, वो पढ़ाते थे, तो वहाँ एडमिशन करा, विशेष ऑर्डर दिया उसको, विशेष ध्यान में जो पढ़ाना, जिसमें भूल में भी उनका नाम, मन में कोई विष्णु भक्ति के बारे में कुछ ध्यान ना आए, कैसे मारे पीटे, इसे सब प्रशासन, इसे सब ये ज्ञान से पढ़ाना उसको, पॉलिटिक्स राजनीति विशारद बनाना, ठीक है, वो इसमें विशारद थे ही, तो पोथी नत्र लेकर पढ़ाने के लिए विविध रूपा से सूत्र आदि पढ़ाए, तो उसको पढ़ाया प्रहलाद जी ने। तो लेकिन बहुत अटैचमेंट था लड़का के साथ, गुरुकुल से बार बार कभी जाता था कयाद के साथ गुरुकुल भ्रमण करने के लिए, कभी आता था, फिर भी मन नहीं मानता, कभी को बुलाता था, थोड़ा लेकर आओ, फिर देखने की इच्छा करता है, लड़का है ना, अपना लड़का बहुत पिता का स्नेह रहता है। बुलाया तो प्रहलाद जी आए, प्रणाम किए, बड़े 4-5 साल के लड़के है, गुरुकुल में अभी एडमिट किए थे, तब एडमिट जो प्रणाम करते हैं पिता, तो और स्नेह में गुदगुद हो जाता है, तो उन्हें उठा करके गोद में ले लिए, और उनके मुँह को सूंघते हुए कि चुमा देते हुए बोले बेटा प्रहलाद, बताओ देखे तेरा गुरु जी ने क्या तुझे पढ़ाए, बहुत कुछ पढ़ाए होंगे ना, हाँ, और ABCD सब सिखा दिए होंगे ना, हाँ सब सिखा दिए, बहुत फॉर्मूला सिखा है, कुछ क्या पढ़ा थोड़ा बताओ तो देखी, हैं, तो पढ़ाओ देखी, बताती हो पहले से बता दिया कि पिताश्री क्या पढ़ाए, ये तो जो पढ़ाए उसका कोई दम नहीं, लेकिन ये है कि वृंदावन छोड़ छाड़ के जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान श्रेष्ठ है। बोला ये कहां से, मैं तो सुना नहीं उसको, ये हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे पढ़ाया जाता है क्या। बहुत चिंतित हुआ, गुस्सा तो आ रहा था, स्नेह भी था, गुस्सा भी था, करे क्या करे, गड़बड़ाया, इमीडिएट बुलाया उनको, बोला दोनों प्रोफेसर को बुलाओ, बोला रे ब्राह्मण ये क्या बोलता है, मेरा लड़का क्या पढ़ाया तूने, ना हजूर महाराज हम कहा कि हम ही खुद नहीं पढ़े पाठ, उनको कैसे पढ़ा दिए महाराज, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ हो गया, माफ कीजिए हमने पढ़ाया, अगर शायद किसी सीख गया, ध्यान दो कोई प्रेशर आते हैं, हाँ शिव रुझ करके आप देखना, ये बदमाश प्रीचर सब ड्रेस बदला बदला कर आते रहते होंगे, देखो ध्यान से कोई प्रीचिंग करते हैं, बड़ा ध्यान देना ना हजूर, एक बार भूल हो गया दोबारा कभी नहीं होगा, एक बार ध्यान रखेंगे वो भूल जाएगा, छोटा बच्चा। तो लेके गए, दे दिया भाई, लेकर गए बेचारे पढ़ाने के लिए, बड़े ध्यान भी रखते थे, कई सिक्योरिटी एक्स्ट्रा एंट्री एंगेज किए, और सिक्योरिटी एंट्री किए कोई नहीं आ सके, बिल्कुल गेट पास सेट पास इशू वासी करके बहुत सारे मेटालिक गेट लगाए, सब लगाए, और लगाने के बाद पढ़ाते थे। वो बेचारे क्या करे, उनका कुछ दोस्त था ही नहीं, लेकिन पढ़ाते वो जो कोर्स का मटेरियल पढ़ाते थे, जो कोर्स उनका जो ICS जो भी जो कोर्स था, वो कोर्स में भी एक नंबर का था, सब पढ़ के बताते थे आंसर, एक ए टू जेड सब आंसर है, वाह बढ़िया, हाई क्लास का, फर्स्ट क्लास का लड़का है। तब कभी कोई रिसेस में छुट्टी दे करके वो बूढ़े हो गए थे, लड़के जाते थे कभी रेस्ट करने के लिए, दोनों प्रोफेसर जब रेस्ट करने जाते लड़के लोग रिसेस में खेलने कूदने जाते थे, तो ये देखने में लड़का राजकुमार से थे, देखने में बड़े सुंदर, गुण भी बड़ा सुंदर था, तब लड़के आते थे बोले युवराज आपका क्या हो गया, आप क्यों खेलने कूदने हमारे साथ नहीं चलते, क्या हो गया है, चलिए खेलते हैं, ये करते सो करते, तब उनको मौका मिल गया, तब उनको बताने लगे रे दैत्य कुमार, मैंने उस स्टूडेंट प्रीचिंग, ये आजकल जो IIF है ना उसका असली आचार्य प्रहलाद महाराज है, ये आजकल से उसको निकालते हैं, वास्तविक IIF प्रोग्राम जो है इंडियन स्टूडेंट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए थे, स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट सबसे पहले उन्होंने प्रचार किए थे, स्कूल में ही शुरू किए थे, उनका टीचर बिल्कुल नहीं चाहते थे, जो प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल क्या जो कुलपति थे, VC चांसलर भी नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था, प्रिंसिपल भी नहीं चाहता था, प्रोफेसर लेक्चर सिक्योरिटी गार्ड किराने पर्यंत नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। इसके बावजूद उस स्कूल में हॉस्टल में रहते हुए रिसेस के टाइम पर पिचिंग कर रहा था, स्टूडेंट पिचिंग शुरुआत प्रथम आचार्य वही है, इतने ऑब्जेक्ट मैंने इतने डिस्टर्बेंस होते हुए, इतने अड़चन होते हुए उन्होंने IIF के प्रोग्राम शुरू कर दिए वहीं पर स्टूडेंट। अब सारे असुर कुमार तो एडमिशन वही हुए थे रॉयल स्कूल में, वही सबसे यूनिवर्सिटी था बड़ा, तो इसमें सब एडमिट किए थे, तो उसी में रिसेस के टाइम में प्रीचिंग शुरू कर दिए, कोई कंप्यूटर था नहीं, कोई क्या प्रोग्राम बोलते हैं आजकल, नहीं प्रोजेक्टर जो प्रोग्राम से क्या बोलते हैं, स्लाइड शो नहीं, और जो भी सब पावर पॉइंट प्रोग्राम नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था पावर पॉइंट, वो सीधा बोलते थे, उनके अपने वाणी का पावर था, बोले बोले बेटे आप बैठो, ये क्या उनको हिसाब बता, पहले से उनका प्रीचिंग के शुरू किया, स्टूडेंट प्रीचिंग का पहले फॉर्मूला क्या, बेटे आप खेलने जा रहे हैं कितना दिन खेलोगे जानते हैं, आपका सर कहना कितने दिन, अभी तो खेलना चाहिए भाई, बाढ़ावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता है ना, नहीं अब यंग एज में तो यंग गर्ल यही तो है नीति, बाढ़ावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी रखता, और वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, हाँ परम ब्रह्म भी को भी न रखता, तो उसमें कोई ध्यान नहीं देता है, सारा जिंदगी ऐसे जीवन बीत जाता है, तो जीवन की पूरा लिस्ट बताने लगे, गिनती करने लगे, वो खेलने में कितने दिन जाता है, सोने में कितने, खाने में कितने, सारे लिस्ट अगर 100 साल के भी हो, पूरा फॉर्मूला बताने हिसाब किताब करके, बचे कहाँ, कैसी तरह गति होगा बताओ, क्या होगा, ऐसे समझाते समझाते बड़े आराम से, बड़े प्रोसेस वाइज, बड़े सिस्टमेटिक वे में पिचिंग किए, ऐसे सिस्टमेटिक वे में बता करके बोले रे दैत्य पुत्र, सुख चाहते हो ना, खेलने में सुख चाहते हो, और खेल पीट करके ऐसे पढ़ाई करेंगे, यूनिवर्सिटी में ए ग्रेड का टेंथ विद इन टेंथ में डिग्री ले लेंगे, बड़े हाई परसेंटेज ले लेंगे, हाई परसेंटेज लेकर के भी क्या मिल जाएगा, हाई सर्टिफिकेट मिलेगा तब क्या, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, किस लिए, सुख ना ना, हाँ सुख मिलेगा, अच्छा नौकरी तभी सुख मिलेगा, शादी सब तो मूल सुख ही है ना, ये जो इंद्रिय द्वारा इस देह के द्वारा इस देह दैहिक इंद्रिय के द्वारा जो जो दैहिक सुख प्राप्त करते हैं मेरे बंधुगण स्टूडेंट गण, वो तो ऐसे ही आप बिना प्रयास से, आप अगर स्वर्ग जोनि में जाओ, बिल्ली बनो, कुत्ता बनो, चिड़िया बनो, सांप बनो, किसी भी जोनि में चले जाओ, कहां पर ऐसे ही मिलते रहेगा, आपके कर्म के अनुसार मिलेगा, उसको प्रयास करने से क्या फायदा, प्रयास कुछ बनने वाला है नहीं, और पहले से ऑलरेडी फिक्स है कितना दुख कितना सुख मिलेगा, उसको तो तुम्हारा बाप भी चेंज नहीं कर सकता, तुम कितने डिग्री ले लो, कितने हाई पोस्ट में सर्विस करो, तुम बोलते सुख पाएगा, नहीं मिलेगा तेरे भाई, नहीं मिलेगा, जो लिस्ट में है इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है ना, कैसे ना, दुख लिए कोई प्रयास करते हैं, दुख प्राप्त करने के लिए कोई नौकरी करते हैं, दुख प्राप्त करने के लिए कोई कोई प्रार्थना, कोई प्रयास, कोई एक सौ प्रयास कोई किए हैं ना, नहीं, दुख कैसे मिलता है, जथा दुखम अयत्नतः, बिना जत्न में जैसे दुख भी आता है, ऐसे बिना जत्न में बिना प्रयास के सुख भी आएगा मेरे बेटा मेरे भाई, ऐसे आने वाला ना। अच्छा हाँ, तो इसलिए तत् प्रयास न कर्तव्यम, इसलिए कहा है कि ऐसा बेकार प्रचेष्टा कर रहे हैं, पढ़ाना लिखना खेलना इसको क्यों करते हैं, ये सर्टिफिकेट के पीछे क्यों पढ़े हैं भाई। जथा आयुम व्यवन परम, इसमें आपका आयु बेकार व्यय हो जाता है। मैं बता दिया ना लिस्ट, 10-20 साल ऐसे ही उसका पीछे बेकार चला जाएगा, उसे मिलेगा क्या। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, क्या पद है, जीव को कराए गाधा, जड़ विद्या जत माया रा वैभव जीव को कराए, क्या डिग्री दिया। हाँ, आजकल ये डिग्री खत्म पता नहीं लगे, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये डिग्री मिलता है सर्टिफिकेट। हाँ, अदृश्य रूप में डिग्री प्राप्त होता है। तो जब ऐसे मतलब कहा है कि तब प्रयास न कर्तव्यम जथा आयु न तथा विंदते खेम मुकुंद चरणाम्बुजम, इसमें मुकुंद चरण थोड़ी प्राप्त होगा जो जीव के सार है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, एक दिन नहीं कई दिन लगा, सिस्टमेटिकली प्रीच करके उनको ये असुर कुमारों को बिल्कुल अंदर से ही साब करके भगत बना डाले, और उनको पता ही नहीं चला। सिक्योरिटी तो बाहर से किसी को आने नहीं देते थे, स्ट्रांग सिक्योरिटी बिल्कुल वेरी हाई टाइट, कोई आने नहीं देते। और ऊपर में ही सारे जो लाइब्रेरी था, कोई इसी प्रकार का ग्रंथ नहीं है जो किसमें भगवान का नाम भी हो। पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई ऐसा पिक्चर भी नहीं था जिसमें भगवान, सब हिरण्यकशिप का नाम, हिरण्यकशिप का पिक्चर, उनके एडवर्टाइज, उनके गुणावली सब वही था। सब में जहां देखो ही बड़ो है, सब पिक्चर पिक्चर जो भी था उसी में था। सुबह क्लास के आरंभ में जो प्रार्थना करते ना बच्चे लोग, वो उनका प्रार्थना करते थे हिरण्यकशिप का, लेकिन उनका आरती प्रार्थना भी करते थे, कोई त्रुटि नहीं था। लेकिन होगा क्या है, तो अंदर से काम चल रहा है भाई। ऐसे हाई ग्रेड का स्टूडेंट पिचिंग उन्होंने किए, बच्चों को बिल्कुल स्कूल में ही वही रहते रहते हॉस्टल में ही। अब एक दिन का बात है, अब उनके दोनों प्रोफेसर आए, कुछ बच्चों को देखे, देखते हैं कि उनका सीट से नीचे धोती खस गया। बोले क्या, किसी का सर में कोई डिजाइन बाल ही नहीं दिखता है, तो बाल ही नहीं, हमारा बाल है कि नहीं। सब सिखा, तिलक, कंठी, कहां से सप्लाई आया क्या हो गया भाई, इतने में सब बोले हरे कृष्ण, रे ये कहां से आया शब्द ब्रह्म, रे बाप रे बाप। पूछे भाई अब क्या, अटेंडेंस छोड़ करके रोने लगे, उन्हें आंख से आंसू आया क्या, अटेंडेंस सिर्फ फेंक फार के खड़ा होकर आंख से आग निकला। बोले स्टूडेंट लोग ये क्या हो गया आपका, है खान पान में कोई संशोधन नहीं, बिल्कुल आप जो मेस में चला रखे वही चलता है, लेकिन क्या पता कि बीच में वफरिंग हो जाता है वो जो रोसैया था ना उसको भी चार नियम पालन करा दिए थे बीच में उनको भी पता नहीं, वो तो मेस में खाते नहीं, गृहस्थ थे ना, अपने घर में खाते थे, और स्टूडेंट लोग तो शादी के नहीं थे, मेस में चार नियम चलता था बिल्कुल, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल चलता था। अब बेचारे को बुद्धि भ्रम हो गया, बोले क्या हो गया, अब समझे क्या, डंडा उठा के लाए, गुस्सा में मार पीट ना करे सब, चल गुरु जी ये है कुमार साहब, युवराज प्रहलाद जी इसे कह रहा। बोले बेटा प्रहलाद बताओ, महाराज जी बड़े बड़े आशा करके हमको, बड़े ध्यान दे करके आपको देने के लिए हमारा ऊपर सौंपे, हमको दिए थे आपको, हम भी बड़े इतने हाई टेट सिक्योरिटी में आपको रखे, तो बेटा कैसे कहां से तेरे मन में बुद्धि आया, कैसे सिखा, उनको सब बदला डाला पूरा, वह क्या हो गया। लेकिन करे क्या हो, जितने गुस्सा होते इतने हरे कृष्ण जपते रहते हैं वो, बाकी स्टूडेंट सब उनको सिखा दे, जब कोई विधि को डर आता है, कोई ऐसे समय आता है ना, कुछ नहीं को हरे कृष्ण जपते रहो, तो जपते रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस हो जपते रहे। बोले करे क्या, बड़े चिंता में पड़ गए, कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, क्या मारे, किसको मारे, किसको पीटे, क्या करे, मारे पीटे, तब भी जितना मारते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, रोते भी नहीं हरे कृष्ण बोलते हैं, वो छाट भी टूट जाता है उनका कुछ भी नहीं होता, हरे कृष्ण बोलते रहते हैं। किचन में गए बोले कोई डिस्टर्ब, वो भी हरे कृष्ण बोलता है। लाइब्रेरी में गए, किताब में भी सब कुछ, कोई कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है, बड़े व्यतिव्यस्त हो गए दोनों प्रोफेसर। आप देखे कोई उपाय नहीं, चलो महाराज को बोल दें शरणागत होने, हमारा गला कटेगा। तो अब बेचारा दौड़ करके बोले हाई स्पीड बुलेट लेकर के भागे रॉयल हाउस में, रॉयल हाउस में जाकर के सीधा सिक्योरिटी को बोले इमीडिएट गेट पास, सीधा डायरेक्ट सम्राट से मिलना है। क्या बात नहीं, आप बिल्कुल गंभीर बात है, पूरा यूनिवर्सिटी बिगड़ चुका है, आप इमीडिएट छोड़ो हमको, अब पास पूछ का बात ही छोड़ो, सीधा गए डायरेक्ट उनके चैम्बर में जाकर बोले क्या थोड़ा क्या बात है ना महाराज, दंडवत प्रणाम दो चार बार करके बोले महाराज गया, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दो हम गए, हम रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन लेटर लेकर, हमारा आप प्रभु जी महाराज हजूर कोई दोष नहीं, पता नहीं कहां से क्या हो रहा है, पता नहीं, वो तो बिगड़ा तो था ही, पूरे स्टूडेंट एक भी नहीं बचे, सारे मुंडन करके तिलक हरे कृष्ण वाले बन गए। बचाइए सरकार, गया सब गया, मिट्टी हो गया, यूनिवर्सिटी के नाम मिट्टी मिट्टी मिल गया, सारे स्टूडेंट भक्त बन गए, वो क्या करें। अब हिरण्यकश्यप इतने गुस्सा हो गया, पहले से तो मन में डाउट था ही, ये बेचारा लड़का बड़ा गड़बड़ कर रहा है, अब तो समुच्चा प्रमाणित हो गया, यही बड़ा मूल जड़ है, मेरा बहुत बड़ा शत्रु बन गया मेरा लड़का, क्या करूं। सच बना, हाँ महाराज हजूर क्या करें, ना कोई ना इतने टाइट सिक्योरिटी, मक्खी तक नहीं अंदर ना जा सके, ना खान पान बिल्कुल नहीं, कपड़ा लता इतने हाई टाइट प्रतिरक्षा योजना लेते हुए भी पता नहीं ये लड़का क्या नैसर्गिक मति। और वो तो वो बिगड़ा हुआ है, सारे को सारे लड़के चौकीदार वो हॉस्टल में से सब बिगड़ चुके हैं महाराज, हमको जाने में इच्छा नहीं होती, सब हरे कृष्ण कीर्तन लगते, हम सुन ही नहीं सकते महाराज, आपके नाम बिना हम कैसे सुने कुछ। आप इतने सुन करके हिरण्यकशिपु इतने गुस्सा में आ गए, चूर चूर हो गए, ओठो फड़फड़ कंपने लगा, बुलाओ बदमाश, इमीडिएट बुलाओ। एक बार पुलिस सर्जेंट तुरंत धड़ाधड़ दौड़ कर गए, पूरा यूनिवर्सिटी अरेस्ट कर दिया, पूरा सर बंधन में ले गए, सारे स्टूडेंट को अरेस्ट कर दिया, एक बार नजरबंदी में ले लिया, बोले आप रखो जो आपका जड़ है बदमाश, उसी को पहले देखते हैं। प्रहलाद को इमीडिएट अरेस्ट कर ही ले लिया, लेकर के रख धक्का मारे खींच डाल दिया उसका पिता, महाराज ये आपके सामने जन्मदाता पिता है, 5 साल के निहत्ता लड़का है, कुछ नहीं उसका पास, इतने गुस्सा इतने दंड, क्या दोष था उनका, क्या दोष था, किस दोष का दोषी था जिसके कारण इतने दंड इतने भर्सना इतने गाली इतने गुलज इतने परिस्थिति सामना करना पड़ता, केवल एक ही दोष था, क्या भगवान में मति था, भगवान नाम में विश्वास था, भगवान नाम को ग्रहण करता था, यही बड़ा महादोष था। ये दोष जो दोषी है उनका निश्चित रूप से परम कल्याण होगा, यही दोष करना चाहिए। तो पिता सम्राट हिरण्यकशिपु तो जल रहे थे, और जैसा जा करके प्रहलाद बंधे हुए थे, उनके उनके चरण में गिर पड़ा, पिताजी प्रणाम कह करके बड़े तोतली बोली से उनके चरण में गिरा, स्नेह तो बदल चुका था अभी गुस्से में, इतने गुस्सा आया जिस प्रकार पैर में ठोकर खाते हुए एक विषधर सर्प फुफकारते हुए जिस प्रकार अवस्था होता है, कंपन दिखाना नहीं कभी, कभी पैर को कोई विषधर सर्प कोई सोया हो, अब अनजान में उसका ऊपर पैर में कुदर के चले जाओ तो देखो वो किस पर लांज पर खड़ा हो जाएगा, एक बार फुफकार कंप करके, वो ऐसे ही ऐसे रूप में एक बार कंप कंपाते हुए फुफकार करने लगा, अगर जना करने लगा धीरे कार करके, तू मेरा कुग्न है, ऐसे ऐसे लड़का, जो जो मुख में गाली आया बकने लगा, धीरे कार कंपने लगा, लाल पड़ गया था, वोट कंप रहा था, एक बार जल रहा था, इतने गुस्सा में सुर मचुर हो गया था, दे जितना आए मन में गाली गुलज करके बोला इमीडिएट मार दो उसको, मारो इमीडिएट, सबको ऑर्डर दिया, जो बड़े बड़े एजेंसी हैं सब घातक एजेंसी, बोला मारो था उसको, मार दो, और बड़े बड़े जो सिक्योरिटी इंचार्ज जो मर्डरर है वो भी डर था, इतने सुंदर लड़का राजकुमार है उसको मारने के लिए तुरंत मर्डर करने के लिए ऑर्डर, एक बार गुस्सा मर्डर दे, लेकिन कौन उनका महाराज का सम्राट का आदेश कोई मान्य नहीं कर सके, अब घेर गए यहीं सामने सामने, बोले मार डालो सारे, तो सारे प्रकार का अस्त्र शस्त्र खड़ग परिधि सूल त्रिशूल लेकर के आयो, उनके सामने ही मारने लगे, बड़े बड़े आवाज करके, विशाल विशाल दैत्य सेनापति बहुत दो हत्या करके बड़े बड़े मुसल खड़ग परिधि मारने लगे, और वो बेचारे निहत्ता कुछ भी नहीं था, हरे कृष्ण माला भी नहीं था पास में, जप कर रहे थे ध्यान होकर, और इतने फोर्स से अस्त्राघात खड़ग से दो हाथ में मार रहे थे, पता नहीं खड़ग उनसे लगता था ढंग करके खंड खंड होकर गिर पड़ता, वो बोलते हाय, अपना हाथ पर देते लाल पड़ गया, खड़ग टूट गया और उसका कुछ नहीं हुआ, बाल भी नहीं वहां का हुआ, इधर से जो त्रिशूल चला रहा था करके त्रिशूल मारा, तीन त्रिशूल तीन मुना खंड त्रिशूल बीन से बैंड, और उनका हाथ में जंक लग गया, और उसका चम में कोई दाग भी नहीं हुआ, वो खड़ा हुआ छोड़ छाड़ करके, राजा को दिखा उसको दिखा, जो मुसल में प्रहार कर रहा था मुसल घुमा करके पूरे जोर से खूब जोर से धमाक मारा, एक मुसल चूर चूर हो गया, उसका अंदर कोई एक कोई थोड़ा सा लग जाए ऐसा भी नहीं हुआ, वो भी खड़ा होकर देख ला क्या हो गया। तो नाना प्रकार के अस्त्र प्रहरण जो कहार प्रहार कर रहे थे अपना शक्ति धारण करके, सबका ये दशा हुआ। हिरण्यकश्यप भी देख रहा है ऊपर से, वो अस्त्रधारी वो मार रहे थे वो भी देख रहे हैं, और बाकी सारे सभासद भी वो देख रहे हैं। प्रहलाद महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के उनके शरण में जप कर रहे हैं। ये दशा हो रहा है। आप जानते हैं ना, जो आपको गाली गुलेज देकर गुस्सा में कुछ मानना चाहे, आप कुछ प्रतिकार प्रतिवाक्य नहीं कहे, वो उसका गुस्सा डबल हो जाता है, कुछ बोलता भी नहीं था, कुछ गाली भी नहीं मांगता मुझे प्रतिउत्तर में, और गुस्सा होता है। बोले अरे ये इतना साधु बनता है, कुछ बोलता भी नहीं, कुछ मारते पर कुछ होता भी नहीं उसका है, और गुस्सा और मारो, लेकिन और मारे को उनका हाथ टूटता है, उसमें कुछ नहीं होता। बोला ले जाओ उसको, यहां से नहीं मरता है, उसको लेकर ऐसे मारो ऐसे मारो, सब लाइन बता दिया। तो बोले ले गए, अब ले जा करके ये से नहीं मरेगा, बड़े बड़े दिग्गज हाथी बुलाओ, हाथी के ऊपर से कुचल दो उसको। तो बड़े बड़े राजा का सम्राट से बड़े बड़े दिग्गज हाथी लाया गया, उसको डाल दिए, डाल कर हाथी को शराब पिला कर बोले उसी के ऊपर चार पैर डाल कुचल दो उसको। हाथी आयो भय दंता हाथी, एक बार गर्जन तर्जन करके आ करके बोले दंता से बोले मारो दांत में उसको, फिर पैर में कुचलो। और माहंत भी बिल्कुल शराबी होकर के बड़े अंकुश मारे उसको हाथी को, बोले दांत मारो उस लड़का को। ओ हाथी भी गर्जना करके बड़े जोर से दांत में मारा, मारते ही दांत उसमें लगा ही नहीं, उनका समूह दांत गिर पड़ा, इतने बड़ा बड़ा दंत हाथी का, दो दो दांत एक साथ गिर पड़ा, लहूलुहान हो गए हाथी, भाग चले माहंत को गिरा करके। बोले बाप रे बाप, पैर क्या चलाएंगे, दांत ऐसे ही गिरा, पैर रहेगा कि नहीं पता नहीं, भाग गए हाथी सारे। महंत गिर पड़ा बेचारा, महंत बोला मैं भी कहां जाऊं, इसका पता नहीं क्या हो रहा है। बोले हाथी काम नहीं दे रहा है, हाथी से नहीं चिल्ला मर रहा है, ऐसे तो सब सेनापति अस्त्र शस्त्र मार मर के मरा नहीं, हाथी से भी कुचल नहीं रहा है, आग में डाल दो, चले आग में जला दो। अरे महा आग लगा गया, विशाल विशाल अग्नि लगा करके सारे पेट्रोल पेट्रोल जितने प्रकार के ईंधन था सारे, मैंने कोई एडल्ट्रेट कोई डुप्लीकेट नहीं था उसमें, सब प्योर पेट्रोल जो ईंधन था सब डाल करके छटाछट आग लगाए, और उनको उनको भी ड्रेस में ड्रेस निकाल करके सारे पेट्रोल में जुड़ जुड़ करके डाल दिया। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काहे को बाल भी जले, कोई बाल जलने का किसी गंध कभी आता ना, कभी आग लग जाता है चमड़ा नहीं जलता है, रोम जल करके थोड़ा फुरकटी गंध आता है, इसे गंध भी नहीं हुआ, क्या हुआ, चंदन जैसा सुगंध आने लगा भाई, आग में डाले से ऐसे सुगंध, ये तो ठंडी के समय शीतलता से आता है, शीतल सुगंध है, ये आग में कैसे निकलता है, इतने पेट्रोल डाले ब्यारेल ब्यारेल कुछ भी नहीं हुआ, उसका आंच से वही सब जल गए, हाँ रखा उन्हीं का बाल बूल जल गया, लेकिन सुगंध आता है आग से, तो आग भी शीतल प्राप्त हो गया, बुझ गया, उनको कुछ नहीं कर पाया। ये हरे कृष्ण का प्रभाव, आग भी फैल मार गया, जो आग जलाए थे उन्हीं का आंख मुंह जल गया, वो भागे, वो लज्जा के मारे सम्राट के सामने बोलने के लिए नहीं रहे, भागे, बोले क्या जाएंगे लेकर बताएंगे रिपोर्ट, अड़ आता था बोले ऐसे नहीं चला, ऐसा करो सांप से कटवाओ, ले जाओ जहां ऐसे चिड़ियाखाना जहां बहुत बड़े बड़े सर्पागार है, केवल सांप सांप इसे धर पड़े उसमें डाल दो, अकेले सारे सांप खा जाए, काटे सब कर गाड़ दे उसको, डाल देने के सांपों के अंदर, बड़े बड़े विषधर सर्प को चढ़ाए गए ऊपर से मार मार के पत्थर मारकर उनको तेजी गुस्सा गुस्सा कराएगा, सब गुस्से में इधर उधर देखे, बोले एक लड़का बड़े अनिंदे सुंदर युवक लड़का आया, आकर के घेर करके दे मारे डांसने लगे, और डांसे क्या, जो एक बार डांसते और डांस दांत उनसे लगने से पहले दांत तो जाता है, स्वयं विषहीन हो गए, बीस भी गया दांत भी गया, और उल्टी साधु बन गए सारे सांप, बोले गहरे मारे, अब उनका भी हमारी अब किसी काटने से उनका बीस भी गया गुस्सा भी गया, बोले सरपत तो चला गया उनका, बोले ये क्या हो गया वो भी बेकार हो गया, सर सर्पागार ही बेकार हो गया, वहां भी छोड़ छाड़ कर लेकर आया, निहत्ता छटपुट कर आ गया, वो सब परेशान हो गए, मारने वाले जितने एजेंसी थे हिरण्यकशिप का, तभी जो देवता असुर जख्य राक्षस गंधर्व किन्नर तक जय क्रिया था, इतने बड़े बड़े असुर एजेंसी था, हर प्रकार में फेलियर फेलियर खाली रिपोर्ट आता है, नहीं 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 कुछ भी नहीं होता है, इसे बचकर निकल पड़ता है, मतलब पीस डालो लेकर के पत्थर में, पत्थर में पीसे, पत्थर भी चूर हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ, वो रिपोर्ट भी नहीं आया। क्या बोले, नहीं वो भी काम नहीं किया। महाराज कैसे हुआ, रिपोर्ट अभी आया नहीं, बाद में आएगा। मानो फेल है महाराज। बोला तुम ऐसा करो, उसको ढाल करके ले करके समुद्र में ढाल दो, ऊपर से डाल दो, समुद्र में गिर जाएगा चाहेगा उसका। तो ले गए बहुत विंध्य पर्वत के ऊपर, ले समुद्र के अंदर बहुत ऊंचा पर्वत से लेकर के ले हुंकार के समुद्र में डाल दिया, था समुद्र में डाल दिया, बहुत ऊंचा शिखर से। 5 साल का लड़का था, जब डाल दिया ऊपर से समुद्र में, तो छोटा लड़का जैसे ऊपर से कभी गिरता ना, अचकच हो जाता ना इसे, तो उनको ऐसे लगा प्रहलाद महाराज को, वो तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, बिल्कुल ध्यान मग्न में जब कर रहे थे, उनको लगा कभी कभी ये देखे ना, आप कोई पिता हैं इसके अंदर, कोई कोई पुत्र संतान वाले कोई पिता होंगे, उनको पता होगा, कभी कभी आपने छोटा स्नेहिल छोटे लड़का को कभी कभी खेलने के लिए लेते हैं, ओ पर फेंकते हैं फिर पकड़ते हैं, फिर फेंकते हैं फिर पकड़ते हैं, स्नेह के कारण उसको खिलाने के लिए खिलाते हुए बच्चे को कभी फेंकते हैं, और बच्चा क्या डरता है उसमें, और फेंको ऐसे उड़ते, उनको आनंद लगता है और जाता है और खुश में आता है, जानता है कि पिता मेरा हाथ पकड़ के प्रसार करके मुझे खड़े तैयार है नीचे पकड़ने के लिए, मैं तो आनंद लेता हूँ ऊपर उड़ने के। तो प्रहलाद महाराज ऐसे लगा, हो उनका पिता हाथ प्रसार करके नीचे खड़े ही हैं पकड़ने के लिए, ऐसे लग रहा था उनको, और वो तो आनंद ले रहे थे ऊपर में उछलने का, ऐसे ही आनंद हो रहा था, और भगवान उनको अपने हाथ पसार करके ले रहे थे, उनको काहे को डर ना भयो, आनंद लौट रहे थे। और समुद्र में गए, समुद्र था समुद्र गया, समुद्र आकर के वंदना किया, बोला हे भक्त प्रवर आपको दर्शन करके मैं ही धन्य हो गया आज, वो स्तुति करके चला गया। और भगवान ने अपने गोद में धारण करके बैठे रहे, आज भगवान ने बड़े कृत, आज मेरा गोद में आया बेटा, इतने उछल कर मेरा गोद में आया, बड़ा आनंद। अब प्रहलाद महाराज आनंद से मूर्छा हो गए, जो भगवान के गोद में स्पर्श से आए, मूर्छित हो गए, मूर्छा खुला देखे, जिस रूप का वर्णन उन्होंने गोद में सुना था नारद महाराज से, इस रूप का वर्णन तो अभी आंख के सामने दिखाई पड़ता है, बोले वही मेरे प्रभु है क्या। प्रभु भी स्नेह के मारे गदगद, और दास भी स्नेह के मारे गदगद, भक्ति के मारे गदगद, दोनों का और क्या उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता भाषा में, इसी प्रकार विनिमय प्रेम का हुआ। तो भगवान रतुर तो बोलेटा प्रहलाद डरो मत, मैं तेरा साथ में हूं, किसी प्रकार से तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, कई प्रकाश करेगा, आज से तीसरा दिन तेरा बेटा को तेरा बाप को मार डालूंगा मैंने, और नहीं सहन करूंगा मैंने, मार डालूंगा, तू चिंता मत करो, पहले से बता दिया उनको। लेकिन बारंबार मूर्छित होते हुए भक्त प्रहलाद महाराज फिर उठ करके आए, उसमें 2 दिन व्यतीत हो चुका था, और 2 दिन में ये रिपोर्ट बड़ा विविडली रिपोर्ट आया था रॉयल हाउस में कि अब जब डाल दिया, दूसरा दिन बीत गया, वो पानी से ऊपर उठाया नहीं, मर ही गया, और डेथ सेरेमनी अब तक 2 दिन का जो शुद्ध क्रिया हो ना वो भी चालू कर दिए थे, हिरण्यकश्यप ने डिक्लेयर कर दिया था मर ही गया, अब तक गया 2 दिन हो गया, नहीं मर गया मैं तो समुद्र में गया, गया मिट गया, मर गया। अब तीसरा दिन की शुरुआत में एक डंका बजने लगा, सिक्योरिटी बोला महाराज राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं, बाप रे बाप। जो जो एजेंसी मारणधारी जो शुद्ध क्रिया पुरोहित तो बोले क्या भूत ना प्रेत ना कौन, नहीं नहीं वही प्रहलाद, बाप रे बाप, तंग हो गए सारे, कोई आ रहा ना आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, वही कपड़ा पहन कर वही माला पहन करके राम राम करते हुए आ रहा है। हिरण्यकश्यप सर खींचते हुए बोला छोड़ छाड़ कर सिंहासन दास वहां जब बैठ गया चिंतित, बोला क्या किया जाए, हद हो गया, उठा करके जब सामने आया बड़ा बद्ध छिड़ा था लास्ट में उसका, उनका बहुत बड़ा ऊंचा महल था, आकाश चंद्रमा जैसे ऊंचा चंद्रमहल था उसका, चंद्रमहल का सिंहासन पर बैठा था, बोला यहां से ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दो बद्ध शिला पर, बड़े बड़े लोग बद्ध शिला था उसमें फेंक कर बद्ध करते थे, बद्ध शिला में फेंको उसे बद्ध करो, गुस्सा में उठकर लेकर के बच्चा को लेकर बद्ध शिला ऊपर से फेंक दे, चंद्र के महल से ऊपर से फेंके शिला के, वो आया ठंडी ठंडी हवा में, वो पहले वायुदेव उनके उदाहरण किए, कृतकृत्य होले भक्त पर प्रहलाद हमको आज आप कृतकृत्य किया, उसके बाद में धरती शिला को फोड़ करके ऊपर उठे धरती देवी आकर के, बहुत दिन पहले यज्ञ पर हा मुझे स्पर्श किए थे, आज अनेक दिन बाद हो भाग्य को प्राप्त किया है भक्तराज प्रहलाद महाराज, आपको धारण करता हूं मैं, आज कृतकृत्य हो गया, केवल आप जैसे भक्तों के कारण मैंने टिका हुआ हूं, नहीं तो तेरे बाप के जैसा असुर लोग से तो मैं तंग आ गया, लेकिन आपके कारण मैं केवल बचा हूं धरती है। और पता नहीं कली महाराज रास्ता में देखे, वो भी रोते हुए देखे, कली महाराज बोले मैं क्या करूं, जब कली युग में मैं कैसे राज करूं। कली युग में भी जब कोई लोग इस भक्त राज प्रहलाद महाराज का चरित्र को बोल श्रवण करेगा, वहां भी मेरा कोई काम राम सब ठप हो जाएगा, सारे फाइल मर्डर, कुछ काम नहीं कर पाए वहां, कैसे करूं। अगर कोई उनका प्रहलाद महाराज का चरित्र सुना तो यहां तो सारे सस्पेंड, कुछ काम नहीं करेगा मेरा नियम। ये भी रोने लगा, धरती भी कृत्य कृत्य हो गया, और लेकर के जब बद्ध शिला में रहे, बद्ध शिला तो चूर चार होकर के टाल्क पाउडर बन चुका था, पाउडर जानते ना, बिल्कुल नरम मुलायम पाउडर, उसमें जाकर प्रहलाद महाराज बैठे और रिपोर्ट लेने के लिए ऊपर से दौड़ दौड़ कर आए, क्योंकि बहुत नीचे 2-4 किलोमीटर नीचे, ऊपर से तभी तो ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट, और लिफ्ट में कितना होगा, जो भी दौड़ दाड़ करके घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा रिपोर्टर से दौड़ दाड़ के आए रिपोर्ट लेने के, अब तो पीस गया होगा। आकर देखते हैं तो फर्स्ट क्लास पाउडर मार कर बैठा हुआ है, बोले मर गए, अब क्या बताएं। सरंग मारे वो नहीं गए, बोले आप ही जाओ महाराज, आप कुमार आप जाओ, महाराज बुला रहे। तो कुमार गए, कुमार राम राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए कुमार पहुंचे महाराज के सामने। महाराज का आंख से आग निकल पड़ा, देख रहे है फिर भी आ गया। अब उनका क्रुद्ध का प्लान का गुस्सा का सीमा ना रहा, सब छोड़ छाड़ के गुस्सा में उठ कर बोले बेटा प्रहलाद बहुत हो गया, हद हो गया तेरा, तू मेरा पुत्र होकर मेरे से महान शत्रु मेरा निकला, परेशान हो गया, तू मरता भी नहीं, क्या करूं, मुझे सामने मेरा ही लड़का नहीं है तो छोटा लड़का, तू इतने बलशाली कैसे बन गया, किसके अंदर तेरा इतने बल आता है, तू मेरा आज्ञा का अवज्ञा कर देता है। ये श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूं जो प्रहलाद महाराज ने बोले। चलो श्लोक को ढूंढने में टाइम लगेगा अभी। हाँ हाँ सभी बड़ंग बड़ा नाम चाह परी साम, वो बोले कि पिताश्री आप मेरे बल क्या, आप भी बल, आल का भी बल और मेरा भी बल, और जितने जरे बड़ी नाम जितने बड़शाली है सबका बलों का बलवानों का बल सब तो एक ही पावर हाउस है, सूर्य से एक ही है, यहीं से आ रहा है ना, कौन है विष्णु, वो सारे समग्र संसार को सभी प्राणियों को अपने अधीन में करके रखे हैं। और एक तो गुस्सा था ही, जैसे घाव कटे घाव में मिर्ची जड़ा दिया जाए, जैसे और मजा से तेजी से गुस्सा और तेज क्रोध उठे, ऐसे ही फिटफिटा करके उठे आए, फिर विष्णु प्रहलाद, हाँ तो आप पढ़ लो उसको, तो बोले प्रहलाद अब मैं सहन नहीं कर सकूंगा, लास्ट में तुझे यही वार्निंग देता हूं, ये मेरा फाइनल वार्ड है, चंद्रहास नामक तलवार निकाल लिए, इसे ऐसा तलवार था जो देखने में चमचमाते हुए चंद्रमा की तरह था, इसका नाम है चंद्रहास खड़ग, चंद्रहास खड़ग को खींच लिए म्यान से, प्रहलाद ये फाइनल वार्निंग फाइनल ऑर्डर, उसमें मैं तुझे अभी मार डालू, अगर तू ना मरो तू मुझे मार डालो, दोनों से एक, आ तू मुझे मार नहीं तो मैं तुझे मारू, एक कोई हो जा, नहीं तो मैं भी मर गया तुझे देख कर, हद हो गया, और उससे परे और कुछ नहीं, चलो जो कुछ करना मुझे मारो नहीं तो तुझे मारे। प्रहलाद महाराज निश्चल अविचल भाव से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे, उच्च सिंहासन से तलवार उठा करके नीचे आ रहा था, फिर भी तू ऐसा ही निष्ठा में, बता तो से तेरा तो तेरा वो बल तेरा प्रभु है कहां, कहां से तुझे इतना समुद्ध बल मिला, सर्वव्यापी है, भगवान के सर्वव्यापकता का वर्णन किए, सर्वव्यापी है, सब जगह है ना, यहां पर है ना, हाँ यहां पर है, वो पिलार के पास में खड़े हुए थे प्रहलाद महाराज, कमारे ये खम्भा है ना, है क्या अदृश्य तो है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, बैठे तो है इधर है, तुझे दिखाई पड़ रहा है, बोले तलवार से बाद में मारू, मारे एक गुस्सा उसके ऊपर, गुस्से के मारे एक मुष्टिका चला दी खम्भे के ऊपर, ये गुस्से के मारे मुक्का मारे, हिरण्यकशिपु महाबली थे, मुक्का चल गया खंबे के ऊपर, वो विशाल सभा भवन का खंबा था, मणि माणिक्य से बना हुआ था, इस खंबे के ऊपर महाशक्तिशाली मुक्का मार दिए, और पदक्षेप ले रहे प्रहलाद की ओर मारने के लिए, इतने में ही जैसे पृथ्वी फाट पड़ा, जैसे प्रलय कालीन शब्द ब्रह्मा लोक भी देवता बाहर निकल गए, क्या पृथ्वी का छत फट गया क्या, आसमान भी दरार आ गया क्या, इतने भयानक शब्द जो कभी ना सुना था ना सुने हैं। इसने अनसुनी महावज्र घोर शब्द होने लगा, कान फट रहा था, जितने दैत्य सेनापति बड़े बड़े सब बैठे थे सब कान में यार प्लग तो नहीं था, हाथ देने लगे इसे, किसका दो पैर में दो सिर पांच सिर जितना जितने कान जितने मुंड था इसने सब दबाने लगे, कान सहा नहीं गया, इतने भयानक गर्जना शब्द है, इतने भयानक शब्द हिरण्यकशिपु भी चकरा गया। अब हाथ से तलवार लिया है, हाथी मुट्ठी मुट्ठी कर रहा है लेकिन कान बंद कैसे करे, लेकिन कान फट भी रहा है गर्जना शब्द के मारे, देख नहीं पड़ रहा है कहां से शब्द आ रहा है कहां, सारे सभा भवन घूर घूर के देखने लगा, कोई कोई नहीं है, कौन शब्द कहां से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं है, कौन बदमाश शब्द कर रहा है, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, और परेशान हो गए। परेशान होकर घूम कर देखे तो खम्भे के पास से धुआं धुआं से दिखाई पड़ता है, धुआं कहां से निकला, आग आग तो नहीं, धुआं कहां से निकला, आब धुआं के अंदर से आग के लपट जैसे अयाल, अयाल जानते हैं ना जो सिंह का जो दाढ़ी होता ना मुछ, उसको अयाल बोलते हैं, सो गोल्डन कलर का होता है आग के कलर का, हाँ चमकीला चमकीला अयाल, सिंह का अयाल दिखाई पड़ने लगा हिलते हुलते, मुझे वो पांख निकल पड़ा, क्या है ये, क्या है ये, बड़े ऐसे करके देखने लगा, देखने लगा बड़े और बड़े सिंह के दहाड़, अब ये गर्जना अब की सिंह के दहाड़ से परिणत हो रहा है, सिंह के गर्जना के, अब ये रूप अद्भुत सिंह के रूप लेने वाला है, बड़े गुस्सेदार सिंह जैसे मुख वैद्यान करते हुए दांत जबड़ा को फैलाते हुए रक्त मुखा हो करके रक्त निकल रहा है उसका अयाल को बिल्कुल ऐसे करते हुए विशाल चक्षु करके गर्जना करते आ रहा है, ऐसे सिंह को देखा बोला सिंह सिंह है, आदमी है नीचे से ना मृगं ना मानुषम, क्या है, स्तंभे सभायाम ना मृगम न मानुषम, यही शब्द तभी बोलते हैं, यही स्तंभ में सभा भवन में इसी स्तंभ के अंदर से ऐसे प्रकट भय ना मृग थे ना मनुष्य थे ना नर थे ना केसरी थे, केसरवान सिंह थे, यही से नरसिंह रूप अति अद्भुतम रूपम उद्बहन, अति अद्भुत रूपम, ना कभी देखा ना सुना ना पढ़ा, किससे भी नहीं सुना था, अति अद्भुत रूपम धारण किया, बिल्कुल घड़ी भरी तो सोचने लगा, कहीं जिन्ना ललज में भी सुना नहीं, कहीं देखा भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं देखा, इस अद्भुत रूप क्या है, आ गया समझ में, हो ना हो माया भी विष्णु ऐसे करता है, प्रहलाद नयन नारद जी मुझे कहवारा से कहे थे विष्णु बड़े माया भी है, बड़े चाल से अद्भुत रूप लेकर मार डालेगा तुझे, तू ऐसा क्या कर रहा है, उनके बात याद आया, हिरण्यकशिपु वही बात कहा करता था, तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु का बात सत्य करने के लिए, सामने हिरण्यकशिपु है ना आक्षण में, तो बोले सत्यम विधातुम, सबसे पहले सत्य किसका बात किए, हिरण्यकशिपु का सत्य, हिरण्यकशिपु सभा में कहा था सभासद में, नारद जी कहते हैं कि हो ना हो माया भी विष्णु अद्भुत अद्भुत रूप लेकर मुझे मार डालने के लिए आएगा, तो उन्हीं का बात सत्य करने के लिए सबसे पहले प्रकट हुए, हाँ हाँ तू ही कहा घोषणा किया था ना, तेरे बात को रखने के लिए मैं अद्भुत रूप लेकर आया, सत्यं विधातुम निज भृत्य भासितम, और निज भृत्य अभी मेरा भृत्य प्रहलाद कहा कि मैं देख रहा हूं सामने दृश्य थे खम्भा के अंदर बैठा हूं, तो उसका बात झूठा करने थोड़ी दूंगा, मैं तो खम्भा में हूं ही, खम्भा से ही निकला, आ तुम मानो मेरा फादर का नाम खम्भा लिखो तो ना लिखो कोई बात नहीं, वो भी मैं तैयार हूं, मेरे फादर का नाम खम्भा स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे भक्तों के लिए हैं सान अब खम्भा चलेगा, हाँ ये अपमान भगवान स्वीकार करें, लेकिन फिर भी प्रकट हो गए मेरे बात के भक्त के बात को सत्य करने के लिए, प्रहलाद महाराज के बात को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगं न मानुषम, स्तंभ से प्रकट भय, बोले और ना निज भृत्य भाषितम, मेरा भृत्य की लिस्ट क्या कम है, और कई बड़े लंबे लिस्ट भृत्य है ना, और कौन भृत्य है ना, ब्रह्मा जी वो भी मेरा भृत्य सेवक है, उन्होंने वरदते समय सारे बहुत लिस्ट बात कहा था, तथास्तु तथास्तु, तुम्हारा जल में नहीं मरू, स्थल में नहीं मरू, आकाश में नहीं मरू, भूमि में नहीं मरू, दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, इसमें नहीं मरू, उसमें नहीं मरू, जो बड़े सारे 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 बात को सत्य प्रमाणित करते हुए, संपूर्ण लिस्ट को सत्य प्रमाणित करते हुए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य जो वाणी जो भाषण किया तो उसको एक एक करके सत्य करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा स्तंभ सभायाम नमृगं नमानुषम। हिरण्यकशिप का तो प्रहलाद महाराज के ऊपर गुस्सा के कारण, उनके अंदर चिल्लाने के कारण उनका तो मति बुद्धि मारी गई थी। ऐसे होता है, जो कोई लोग बड़े बड़े भक्तों का प्रति ऐसे विरुद्धाचरण, उनके अपमान आदि कर दे बैठते हैं, उनका ऐसे ही दशा होता है। भागवत दशम स्कंद के चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक 46 नंबर श्लोक में भगवान कहा गया है, सुखदेव जी कहते हैं, आयुं श्रीयं जसो धर्म लोकान आशीष एवच इति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसां महद अतिक्रम। जो पुरुष ऐसे मरे श्रेष्ठ भगवत भक्त महान पुरुषों का व्यतिक्रम, उसका उसका विरुद्धाचरण करता है, उसको अपमान कर बैठता है, तो उसका क्या होता है महद अतिक्रम करने से, पुनसान महद व्यतिक्रम। तो लिस्ट भगवान कहते हैं, सबसे पहले आयु, उसका आयु तो मैं इमीडिएट डिलीट करता हूं, तुरंत आयु खींच लेता हूं, आयु और न श्रीय, सारे श्री धन संपत्ति खींच लेता हूं उसका, आयु श्री और जसम संपूर्ण जस ख्याति खत्म, आयु श्रीयम जसव धर्म संपूर्ण धर्म विघा, सारे धर्म जाता है, जसो धर्मम सारे जितने धर्म क्या सारे खता खता खलास, आयु श्रीयम जसो धर्मम लोकान आशीष ये वच, वो बहुत बहुत लोगों ने बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद बहुत इकट्ठा किया था, सारे मिटिया मेट हो जाएगा एक क्षण में, मेरे भक्तों के प्रति अपराध कर बैठा, उनको अपमान कर दिया, एक क्षण में सारे शुभ आशीष, सारे शुभ के आगार लिस्ट श्लोकान शुभान आशीषान सब खत्म, इति श्रेयांसी सर्वाणी समस्त श्रेय फल, समस्त श्रेय चीज, समस्त श्रेष्ठ चीज सर्वोत भावे समुच्च रूपेण सर्वाणी श्रेयांसी खत्म हो जाता है। महद व्यतिक्रम पुनसा महद व्यतिक्रम, कोई पुरुष इसी प्रकार मेरे भक्त का अवमान न कर दे, उनको अपराध कर बैठे, तो उनका इस सारे प्रकार से मैं सब खत्म कर देता हूं, ऐसा महद व्यतिक्रम का फल है। तो ये तो साक्षात भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद प्रहलाद महाराज का ऐसे ही ऐसे सिस्टमेटिक वे में अपराध किया, अपराध तो अपराध गाली गुलज के हद हो गया, मारने जा रहा था, अभी एक स्टेप में मारने वाला ही था, तो उनका तो उनका तो लिस्ट सत्य प्रमाणित करना ही था, यह भी वेद वाक्य है, भक्त और भागवत में बात लिखा गया, उसको भी सत्य प्रमाणित करना था, इसलिए सत्य विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान के भक्त लोग के बात कहें कि भगवान आपके भक्तों का जो अनादर करता है, आप उनका इसी प्रकार दुरावस्था करते हैं, भगवान को हमें जरूर करता हूं, अभी करूंगा, अभी आप देखो आपके सामने सामने क्या करता हूं, आयु तो खत्म किया ही हूं, अभी समझो अभी वापस आने वाला नहीं हो, अभी उसका काम वही बनाऊंगा, चिंता मत करो। उनके सत्य विधात्म निज भृत्यवास, ऐसे ऐसे जितने प्रकार के भक्त, जितने भागवत, जितने संत, जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने ऋषि, जितने मुनि, जितने भक्त हुए हैं, जितने होंगे, जितने हुए थे, सभी के बात को सत्य विधातम निज भृत्यभाषितम समे सभायाम न मृगम न वानसम अद्भुत रूपम उद्वहन, अति अद्भुत रूप को उद्भावन किए, किस लिए, केवल मेरा भक्त को बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए, और ये हिरणा खग मारने तो यही से मार सकता है, ऐसा कर, लेकिन काम करना था मेरा भक्त के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए, मैं नरहरि रूप में प्रकट हुआ, ना कि हिरण का शिव दत्य राज को वध करने के लिए आया, उसको तो यही से डायबिटीज मार दिया, अंदर ही बैठा था यही से मार देता बीमारी, उनको मारने के लिए नहीं आया प्रहलाद, बाकी प्रहलाद तुझे तो बचाया था ऐसे ही, कितने मार मार के हद हो गया, नहीं मारा तुझे, ऐसे बचा दिया था, तुझे बचाने के लिए नहीं आया, ना इसको मारने के लिए नहीं आया, तो आया किस लिए, किए आप जैसे सुधी जन भक्तों का मन में विश्वास दिलाने के लिए, कि मेरा जो कोई भजन करता है, मेरा कोई शरण लेता है, मेरा नाम में कोई समर्पित चित्त से मेरा शरण में लेता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा व्रत उपासना करता है, उनको उनके मन में ये 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 विश्वास दिलाने के लिए, उनके दम बढ़ाने के लिए, उनको मन में ये सृष्टि दिलाने के लिए ही मैंने आया। यही केवल कृत्य सत्यम विधातम निज भृत्य भाष्यम, शास्त्र के वाक्य को, श्रुति वाक्य को सिद्ध करने के लिए, सत्य प्रमाणित करने के लिए ऐसे ही मैंने अद्भुत अद्भुत रूप लेता ही रहता हूं। लेते रहूं अभी लिया तेरे सामने, अभी देख। मति मारी है बुद्धि मारी गई हिरण्यकशिपु, समझ लिया यही हरि होगा, यही उत्पटांग रूप लेकर मुझे मारने आया है। बोला चलो अब सामने हो गया ना, तेरा नाम तो मैं पहले से सारे डिलीट कर दिया था, अब तो आ गया। फिर डिलीट हुए भी डिलीट नहीं होता है, पता नहीं क्या अद्भुत कंप्यूटर है तेरा, प्रोग्राम तेरा सॉफ्टवेयर बड़ा, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा है। हाँ? अब क्या करें? अब बोले चलो यही सामने सामने मार देता हूँ तुझे, तू रहता मैं रहे, कोई एक ईश्वर रहेगा, मैं ईश्वर बना था लेकिन अब तू सामने आ गया, अभी डिलीट करता हूँ तुझे सामने। तब ले लिया अस्त्र सचो गदा लेकर, टूट पड़ा, खुद पड़ा, बहुत पराक्रमी था, डर नहीं हुआ उसको, सामने भगवान को देख कर खुद पड़ा उसके ऊपर में। अब जैसे ज्वानंग पतंगा, जैसे बारिश के समय में देखेंगे जो पतंगा और कोई लाइट जलता है ना, खींचे हुए जाते हैं आज के उसके ऊपर घुस जाते हैं, वो क्या होता है एक मिनट में फिस जल करके राख, केवल दुर्गंध निकलता है, बस खत्म डिलीट। और ऐसा ही एक बार गुस्से पर बुद्धि तो मारी गई था सबसे पहले महत अपराध के महत अतिक्रम करके, अब जंप करके कूद पड़ा भगवान के ऊपर पड़ने के लिए। भगवान ने बोले सलाम है, तभी मेरा पार्षद आया था, थोड़ा खेल तो कर लूं, अब काम तो बनाऊंगा सर, थोड़ा खेल तो कर लूं, अब खेल का मौका कहाँ मिले, उनके साथ खेलना तो किसके साथ खेलूं। तो सर खेल किए, थोड़ा पकड़े उसको मन मार मुल्ले, थोड़े उनके साथ खेल किए, तो उनका हाथ से खिस गया, हाथ से खिसक पड़ा, खिस गया। देवता लोग में सब देख रहे थे खेल, ऊपर से सब देख रहे, त्रस्त होकर। जैसे नरसिंह देव का हाथ में हिरणा का खिस गया, तो उनका मानो बोले हारे मर गए, बच जाएगा तो हमारा तो हाथा हिला हिसाब करेगा। अभी बोले आप लोग देख रहे थे ना मुझे, अब आपका हिसाब किसाब करेगा, हाय हाय प्रभु क्या हो गया। तो भगवान बोले चिंता मत करो, और दौड़ करके भगवान पास ना कर दौड़ कर गया। प्रहलाद महाराज बोले थे पिताजी कहां के जान बुझ कर मरने के लिए जा रहे हैं, पिताजी अभी भी समझ जाओ ये भगवान है, वो सबके आश्रय दाता है, उनको अभी भी प्रार्थना करो, अभी आपको वरदान दे देंगे, अभी स्वीकार कर देंगे, ये बहुत स्नेहिल पिता है, ये कभी उसके ऊपर क्रोध नहीं करते हैं पिताजी, उनको अभी भी समझ लो। जैसे क्रुद्ध व्यक्ति को, जो खड़ व्यक्ति को कोई उपदेश है, उपदेश दे तो क्रुद्ध आया तो उनको गुस्सा बढ़ता है, तो गुस्सा बढ़ गया, अभी भगवान के मानने से पहले बोला उसको पहले मार दूं आपको, तो दौड़ कर गया उसको मारने के लिए। तो भगवान बोले अच्छा मेरे से तो मेरा भक्त को मारने के लिए दौड़ पड़ा, पकड़ लिए। कैसे? जैसे बिल्ली चूहा को मारने के लिए जाता है, तब देखें कोई बिल्ली चूहा को मार के खाने से पहले जब पकड़ता है इमिडिएट नहीं खा जाता है उसको, पकड़ता है दांत में, ले लेता है, जब दांत मुख में ले लेता है चूहा को, तो चूहा को सोच रहा है साक्षात मृत्यु के कवड़ में आ ही गया, लेकिन कभी कभी फिर छोड़ देता है उसको, मुंह से छोड़ देता है, फिर बैठता है ऐसे करके देखता है उसको, तो चूहा भी थोड़ा देखता है कुछ नहीं करता है, तो दे भागने लगता है, तो बिल्ली के सामने कितना होगा, ये जो फट ऐसे पंजा मार के पकड़ लेता है, ये जो पंजा पकड़ता पूरा गड़ जाता है नख उसमें, तो छट 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 रक्तधार बह जाता है, तो बिल्ली के सामने चूहा क्या दौड़ेगा, ये एक पंजा फकट पकड़ लेगा ऐसे खट करके। तो हिरण्यकशिपु जैसे प्रहलाद को मारने के लिए जमकर दौड़ पड़ा, भगवान तो नरहरि के रूप में इसे देख रहे थे, सिंह रूप में, ये पंजा बढ़ाकर खप पकड़ लिया उसको, ऐसे जैसे आप कभी कभी ये छोटे छोटे कीड़े में पकड़ करके ऐसे देखते हैं ना, ऐसे ही पकड़े, ऐसे पकड़ कर देखे, छट 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 कर रहा था वो, हाथ पर पीट रहा था अस्त्र से, लेकिन ऐसे भगवान पकड़े उसे देखे, और देख करके बोले तुझे वो कैसे तुम मारने के लिए, बहुत सत्यम विधा तुम ये सारे बात को, मुझे ब्रह्मा का बात को सत्य करना होगा, क्या करूं तुझे ऐसे भी नहीं मारूंगा, सब सबका बात सत्य करना होगा। तो छट छट करते हुए लाए, वो चले गए घर के द्वार पर कॉरिडोर में, अब डोर में जाकर बैठ गए, बैठ करके अपने गोद में ले लिए, बड़े आसान से गोद में सुला दिए, सुला कर दे, क्योंकि अब नीचे नहीं ऊपर नहीं आसमान में जमनी धरती किसमें नहीं, सब सत्य करेंगे ना सर बात को, सत्य करने के लिए गोद में सुला दिए, और सुला करके भी अस्त्र में नहीं मरूंगा, शस्त्र में नहीं मरूंगा, तभी तब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम, तब कर कमल, आपके हाथ तो कमल जैसा है। कमल जानते ना किसी बोलते हैं, पद्म कमल के फूल, कमल बहुत मुलायम होता है, बड़े सुगंधी होता है, देखने में बड़े सुंदर दिखता है, और उसमें अद्भुत श्रृंग जैसे नाखून, ये पहाड़ के सुंग जैसे बड़े कठिन नाखून कैसे निकला भाई? ये कमल के पखड़ा तो बहुत मुलायम नरम होता है, ये कमल जैसे आपके हाथ दिखाई पड़ता है, कमल जैसे, बिल्कुल कमल जैसे दिखता भी है भी कमल। इसलिए भक्त बोलते हैं तब कर कमल बरे, वरिष्ठ कमल जैसे आपके कर, आपके हाथ, लेकिन अद्भुत है। क्या अद्भुत है? ना नाखून उसमें श्रृंग की तरह इतने कठिन, अरे ऐसे कमल की तरह मुलायम, फिर कैसे कठिन, यही तो अद्भुत है। इसलिए सहदेव गोस्वामी कहते हैं तब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत श्रृंग निकला, कमल में कोई श्रृंग निकलता है, लेकिन यही अद्भुत है, यही वंडरफुल है, यही आश्चर्य। भगवान को आपने भक्त की बात रखने के लिए वंडर को भी वंडर कर डालते हैं। तो अद्भुत श्रृंगम नाक के अस्त्र श्रृंग जैसे निकला, हटात नाखून बढ़ने लगा, देखते 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 सारे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र फेल मार गए, नाखून इसने महान अस्त्र बना, बड़े बड़े तोप राशि फेल मार जाए उनके सामने, लगा दिए बख्खे के ऊपर, सीला टंक नखला, सीला जैसा सेला भी फेल मार जाएगा, बड़े बड़े कठिन कठिन पत्थर भी चूर चूर हो जाएगा, इतने कठोर छाती था बख्खे था हिरण्यकशिपु का, इतने कठोर से कठोर हिरण्यकशिपु की सील जैसे बख्खे को जैसे चीरे, जैसे कोई बड़े मद हाथी एक गुलाब के फूल उनके सामने आ जाए उसको फाड़ डाले, उसको बड़ी तकलीफ होगा। मत गज हाथी गुलाब के फूल को कुचल दे, उसको बहुत परिश्रम लगेगा क्या? जितने परिश्रम लगेगा अनुमान करो, इतने परिश्रम लगा, इतने परिश्रम लगा भगवान नृसिंहदेव को उनका शिला जैसे बख्खे को विदीर्ण करने के लिए, देखते देखते ही फाड़ डाले, नदी का धारा समुद्र जैसा फुवारा फूकने लगा, बहने लगा, चार धारा में नदी, नदी के जैसा रक्त गिरने लगा, बहने लगा। प्रहलाद महाराज देख रहे हैं उनके सामने घटना, सारे सभासद देख रहे हैं, ये भयानक दृश्य घट रहा है। अब देखेंगे क्या, यहां तो यहां हाल करते थे महाराज दत्त्य महाराज हिरण्यकशिप का, बाकी सारे जो उनके संगी पंगी भंगी जो सब थे, वो सब असुर सन्यासनापति, वो भी गुस्सा हो रहे थे, अपना अपने कमान बांध लेकर तैयार हो रहे थे, भगवान बोले हाथ तो यहां लगा है, बाकी उनके तो शंख चक्र का, भगवान आयुध वो भी लिए हुए थे, बाकी आयुध किसी काम के, ये सब कोई काम नहीं लगेगा, वरदान किया है उसमें से मारने में काम नहीं आएगा, बाकी उनमें तो काम में आएगा ना, तो उनको पकड़ पकड़ कर किसी शंख में, किसी को भाल में, किसी को देख में, किसी को फंक में, किसी को पैर में, ऐसे ऐसे मार डाले, हजारों लाखों असुर को ऐसे ही मारते गए लिस्ट नहीं। जब वो मर गया तब तो उस डेढ़ बड़ी का लाश कोई आहा करने के लिए नहीं मरता, केवल हिरण्यकशिपु बच गए, बाकी कोई ना, ये हिरण्यकशिपु के बेटा प्रहलाद ही था, बाकी सारे मर ही चुके थे, सर डेढ़ बड़ी का ढार, सब का ढार लग चुका, सब मार चुके, इधर उधर इधर उधर मार चुके थे ऐसे ही है। अब ऐसे ही फाड़ डाले, इतने में संतुष्ट नहीं हुए, इतने में संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि भगवान की गोद में कोई शरीर आ जाए तो उसमें कोई कलमस रहेगा क्या होगा? अरे भगवान के हाथ में, भगवान स्वयं हाथ में किसी को पकड़े, कोई शरीर को उठाए और उसको अपना आंख से देखे, और देखे नहीं अपना गोद में सुलाए, उसका अंदर कलमस कैसे रह सकता है? जिसका नाम मात्र उच्चारण से कलमस से मुक्त हो जाता है, वो भगवत स्पर्श प्राप्त किया, स्पर्श नहीं उसको धारण किए, उसको पास में लेकर देखे, उसको अपने गोद में सुलाए, अपने हाथ में नाखून में उसको फाड़े, उनके अंतस्थल में को देखे, वो उसमें अंदर बाहर सब पुत पवित्र हो चुका था। अभी तो पहले से तो उनका अंदर में बैठे होकर के ऑलरेडी पवित्रकरण कर चुके थे, अंत बिल्कुल पवित्र था। फूल के मला बाहर से क्या लाएंगे, वो भी सब धोना पड़ेगा, मतलब उनको क्या करना, शुद्धि करना पड़ेगा। ये इतने फाइन फर्स्ट क्लास अंत के जो माला है, जो सिंह के रूप में फूल के माला थोड़ी शोभा पाएगा, भयानक गरजने वाले हिंस्र जंतु के जो शोभा देने वाली उनको मैचिंग जो माला है वो हो इस रक्त में सना हुआ अंत की माला, तो ऐसे मैचिंग गार्लैंड फिट बिफिटिंग गार्लैंड निकाले उसके अंदर से, बहुत विशाल बपू था, विशाल अंतनाड़ी था, पहले से शुद्ध कर चुके थे ऊपर से अंदर से, तो वो हाथ डालकर खींच डाले, बहुत लंबा चौड़ा रक्त से सने हुए ताजा ताजा रक्त गिरता हुआ अंत माला ला करके अपने से आप ब्रह्माला धारण कर दे। कोई भक्त पहनने वाला नहीं था, कौन रहेगा बच्चा बल्ला तो यही से ही 4 साल का, उनके घुटने के बराबर नहीं था। वो बैठ गए थे जाके हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर, वहां बैठ गए थे, बैठने के लिए कोई जगह नहीं था। बोले मार डाला अब क्या करो, इधर उधर देख कर बैठ गए ऊपर सिंहासन में, बैठ गए जाके हिरण्यकश्यप के आसन में बैठ गए। बैठ करके उनका फाड़ करके उनका आंत नाड़ी निकल कर डाल दिए और जो खून निकल रहा था पीने लगे, उसको पीने रहते एक बार और विकराल, एक तो गर्जना तर्जना आंख अयाल और जो नखवाद ध्यान मुखवाद, ये तो ऑलरेडी ये तो भयानक अति, उसके ऊपर में अंत के माला पहने हुए रक्त को पीने लगे, उसको कौन देख सकेगा। असुर तो ऐसे ही मर चुके थे देखने के लिए, लेकिन देवता लोग सब आ चुके थे अभी तो भिन्न के सुखा दिशा पर बनाने के लिए सब आए थे, लेकिन बहुत दूर से डर के मारे खड़े थे, सब टेलीस्कोप लेकर देख रहे थे, पास में नहीं आए। बोले बाप रे बाप, हो ना हो कोई पंजा हमारे ऊपर लग जाए तो हमारा हाल खराब, यही से ऐसे हाथ बिदारते हैं, यही से आवाज करते, कहीं एक दाढ़ी हमारा और लग जाए हमारा निहाल हो जाए, बाप रे बाप कौन जाए पास में, कोई नहीं जा रहा था, सब दूर से देख रहे थे। क्या भयानक गुस्सा, क्या दृश्य, अरे बाप रे बाप, दहाड़ रहे हैं खून पी रहे हैं, ये देख रहे हैं इधर उधर शांत नहीं हो रहे, अरे मरी गया हिरण्यकशिपु, उसका रक्त पी डाले, उसका अंत को एक माला पहने, फिर भी नहीं गुस्सा बन रहा है। देख लो भक्त लोग, मेरे एक बार गुस्सा होता तो ऐसे डाउन नहीं होता है, ऐसे हिट चढ़ जाता है, मेरे भक्तों को तो इतने परेशान किया, इतने परेशान किया, ऐसे भक्तों के अपराध के कारण गुस्सा में चूर चूर हो रहे थे, गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। देवता लोग तो बोले हिसाब अभी मर गए, भगवान को शांत करना था, अब आरती फल पुष्पों से उपचार लेकर तैयार, लेकिन करें कैसे आरती, कोई पास में नहीं जाने के भटक नहीं रहे। देवी सूक्त पढ़ करके लक्ष्मी जी की आराधना की, ये श्लोक निकालो, ब्रह्मादय सुरगणा मने उत्थ सिद्धा, हाँ तो इसमें से निकालो। तो उन्होंने क्या किए, तब ब्रह्मा जी ने तब देवी सूक्त पढ़े, बोले चलो हमसे नहीं बने, तो उनका प्रेयसी जो है वो लक्ष्मी जी, तो उनको बुलाते हैं, तो अपने पति को वही शांत करेंगे और क्या, तो उनको लक्ष्मी जी को बुलाए, लक्ष्मी जी को बुलाए, लक्ष्मी कोई बात नहीं हमारे हस्बैंड है, कोई बात थोड़ी हमें उनका अर्धांगी नहीं हो, कोई बात कि पत्नी का पतिव्रति पत्नी का भाई बहुत दम रहता है अपने पति को समझाने के लिए, ऐसा बात नहीं, तो बड़े दम लेकर का आए, कोई बात नहीं, तो देवता लोग मैं अभी कर देता हूँ ना, कोई चिंता मत करो, आप बड़े लाए सब आरती पेट साथ में, बोले आरती पेट मेरे पास में ले, साथ में लेकर चलो, मैं अभी इतना लोड नहीं लूंगा, बहुत सारे गठरी फल फल लेकर आए थे ना, संतु बोले चलो, और 2-4 स्टेप आगे आए, जैसे आकर देखे, बोलते ब्रह्मा ऐसा फोटो तो मैं कभी देखा नहीं, पूरा एल्बम में देखा हूँ ऐसा फोटो नहीं है, पूरे प्रोग्राम में ऐसा ऐसा रूप में वो मेरा पति है कि नहीं मेरा डाउट, आप कहाँ बुला लिया मुझे ना माता जी यही है ना, समझ नहीं आ रहा ये, इतने सुंदर मेरे पति है, उफ बाप रे बाप देखा नहीं जाता है, इतने तेज। लक्ष्मी जी को भी थोड़ा आंच आ गई, वो भी लौट कर देखने लगे, देवता लोग हम क्या करें, लक्ष्मी जी भी ऐसे करें, लेकिन वो देखते हैं बेटा प्रहलाद अभी निर्भय खड़ा है बेट में, ब्लड के नदी के किनारे खड़ा है। तो ब्रह्मा जी बड़े साहस करके शिव और ब्रह्मा आगे चले लक्ष्मी जी को साथ में लेकर, बोले बेटा प्रहलाद देखो आपके वजह से सारे हाल हुआ है, देखो किसका वजह से था, बर कौन दिया था, ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, बेटा प्रहलाद तेरे वजह से, तू ही तेरा बेटा उनका बेटा है ना, तो इसके लिए बड़ा गुस्सा हुए हैं प्रभु हमारे, तेरे वजह से और कुछ नहीं, सत्य में तू तू ही उनका दास है, तेरे गुस्सा कारण इतने गुस्सा हो गए, बेटा तू ये काम तू ही बनाओ, तू ही मिटाओ उनको, हमको नहीं जाने भाई, शांत करो, हम उनको पूजा करने के लिए रेडी हैं भाई, आप तो शांत करो। तो उनके आदेश पा करके प्रहलाद महाराज तुरंत तैयार हो गए, बोले कोई बात नहीं पिता में, कोई बात नहीं, मुझे आप नहीं दायित्व देते हैं लेकिन अब चलता हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोलते हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत्थ सिद्धा सत्वे कथानगतयो वचसं प्रवाहे नाराधितं पुरुगणे अधुनापि पिप्रुः किं तुष्टमर्हति समे हरिरुग्रजाते। बोलते ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत्थ सिद्धा। प्रह्लाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे ब्रह्मा आदि देवगण और मुनि मुनयोत्थ सिद्धा, बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि ब्रह्मा आदि श्री आदि सभी सत्य कतानगतयो वचसां प्रभाहे, और बड़े बड़े सप्तगुण के अधिपति आपने अबाध मंत्रवत मंत्रवत और वेद मंत्र से आपने बचा से आपने माने अविश्रांत मंत्र गति द्वारा आपके जो स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं उनके अबाद बचसा के द्वारा जो जो समित नहीं हुए, जो आपको तुष्ट नहीं कर पाए, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत्थ सिद्धा सत्य कथान गतयो बचसंग प्रवाह है, प्रवाहित बचसा द्वारा जिसको शांत नहीं कर पाए, जिसको नाराधितं पुरुगणा अधुनापि पिप्रु, जिसको आराधना नहीं कर पाए, जिसको संतुष्ट नहीं कर पाए, आराधना में संतुष्ट नहीं कर पाए, किं तुष्टम अर्हति, तो उनको मैं तुष्ट कर पाऊं, मैं ये बच्चा बिल्कुल ये 2.5 फुट के हाइट का 5 साल के उम्र का लड़का और ये उग्र हरि हरि उग्र जाते अजाते मतलब हरि को, अब एक तो मैं लड़का छोटा, दूसरा हाइट मेरा कम है, तीसरे कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्कूल में एडमिशन हुआ था वो टीचर लोग भी बयान कर दिए यूनिवर्सिटी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और चौथे में मेरा कुल भी असुर जाते हैं, कोई ब्राह्मण भी नहीं हूं, असुर कुल जाता उग्र उग्र जन्म मेरा है, ये सारे टाइटल में कैसे समर्थ हो सकता हूं ये हरि को प्रसन्न करने के लिए, हरि को आराधना करने के लिए। लेकिन चलो आप लोग कहते हैं इसलिए प्रयास करता हूं। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रहलाद महाराज करते हैं प्रार्थना करके और आगे ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ में पकड़ा दिए बरमाला और नन्ही नन्ही हाथ में छोटी छोटी पैर में तो तीन तुतली बोलती बोलती हुए आगे बढ़ते चले माला लेकर के। इतने विशाल भयानक आल लेते हुए नरसिंह मूर्ति ऐसे ऐसे देख रहे थे, नीचे देखे ऐसे दिखना पड़ा उनको हेड डाउन करके, क्योंकि वो बहुत नीचे थे, ऊपर बैठे थे, देखे छोटा बच्चा लड़का पुआ। इतने स्नेह में गद गद हो गए स्नेह में समान रहा नहीं गया प्रभु से, पता नहीं कहां अंतर्धान हो गया सारे क्रोध, सारे क्रोध के विकार सब कुछ कहीं अंतर्धान हो गया, कहां से इतना स्नेह अनाविल पितृ स्नेह वात्सल्य उमड़ पड़ा, हाथ में उठा लिए गोद में, क्योंकि प्रहलाद जी का यह हाल नहीं था कि उठा हुआ तो हो 20-25 फुट ऊंचा हाइट में ऐसे ऐसे तो बोल कर रहा, वो नीचे देखे ऐसे ऐसे देख करके वो ऐसे आंख से आंसू गिर गया, हाय मेरे छोटा बच्चा मुझे माला देने के लिए प्रयास कर रहा, हाथ उठा रहा है, हाथ नहीं लग रहा है उसका, मुझे माला देना चाहता है, रो रहा है, मुझे प्रार्थना कर रहा है, स्नेह होकर असुरसिक्त नयन में हरि उनको गोद से उठा लिए नीचे ले करके उनके मथा को सूंघने लगे चाटने लगे। सिंह है ना, सिंह अपने सावक को जब स्नेह करेगा कैसे करेगा, चुम थोड़ी सकता है, चाटेगा सूंघेगा, क्योंकि आधा बपू तो ऊपर का हिस्सा सिंह है, नीचे तो आदमी है, ऊपर का सिंह बपू है, सिंह बपू अपने साग सावक को जैसे स्नेह सिक्त होकर के वात्सल्य में जैसे उत्प्रत करेगा, ठीक इसी प्रकार प्रहलाद महाराज को लेकर के सूंघने लगे चाटने लगे गुद गुद होने लगे, वो माला को ऐसे मुंह दिखा दिए तो पहना दो पहना दो, ओहो इतने बड़े विशाल मुंह, प्रहलाद जी बड़े प्रयास करके इधर से उधर से वो अपने आप पहने लिए, वो क्या पहनाया गया उनके छोटे छोटे हाथ था, लेकिन उनके प्रयास मात्र बहुत था, भगवान आपने इच्छा से उसको पहन लिए माला, प्रहलाद जी के स्नेह सिक्त माला, उसको नहीं पहने किसको पहनेंगे, किसको पहनेंगे, उसको पहन लिए, बड़े सुख से पहने, इतने सुखी हो गए, इतने मग्न हो गए, इतने स्नेह से आसक्त हो गया, तो भगवान ने वही बैठे बैठे सोचने लगे हाय हाय ये प्रहलाद मेरा बेटा, तू इतना छोटा बनकर के मेरा बेटा बनकर के मेरा पुत्र जैसा बनकर के कितने आनंद लौट रहा है रे, मेरे मेरा जिंदगी में इतना आनंद कभी नहीं पाया, हार गया मैंने तेरे पास में, हार गया, मेरे सारे आनंद का कंद हूं सारे आनंद का स्टोर हाउस हूं, स्रोत हूं, लेकिन ऐसे आनंद का मैं कहने कभी नहीं चखा। बेटा बनने में ऐसा भी आनंद होता है, और वो भी बेटा जो छोटी जाति में हो, छोटी उम्र में हो, छोटी ऐसे इसी प्रकार हो, और निस्सहाय अवस्था में हो, और बहुत बड़ी चोट खाया हो, मरने में दावा पर हो, और उसको कोई बचाए और वो भगवान की प्रार्थना करते रहे, इसी प्रकार जो अशुभ, जो असमर्थ, जो प्रेम की, जो स्नेह की जो धारा, उसको जो आनंद, उसको जो बच्चा जो 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 प्राप्त करता है, जो उसको अनुभव करता है, मैं कभी उसको अनुभव नहीं कर पाया प्रहलाद, में मारे हार गया तेरे साथ में। अभी मैं संकल्प करता हूं हमेशा जब प्रकट होऊंगा, संतान हो करके, बच्चा हो करके प्रकट होऊंगा, आगे नरसिंह महाराज, नरसिंह भगवान के आगे जितने भी अवतार हुआ भगवान ने कभी इधर से उधर से नदी से पर्वत से नाग से खम्मा से कभी प्रकट नहीं भए, हमेशा पिता माता बना करके एक बेटा बन करके पैदा हुए। बोले मान गया, बेटा बनने से क्या आनंद है भाई, और बेटा भी फिर निहत्ता बन करके, छोटा बन करके, हर प्रकार के निस्सहाय बन करके बेटा, ओह क्या आनंद है। इसी निस्सहाय अवस्था में जो हरि में शरणागत हो जाए, जो भगवत नाम समर्पित होकर जप करे, उसका जो आनंद है वो केवल अनुभव गम्य है। इस आनंद को हरि ही प्राप्त करने के लिए विवश होकर के शिशु होना ही पड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सत्यम विधातम निज भृत्यभाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानसम। इसी प्रकार अति अद्भुत रूप को, इसी प्रकार भक्त में विश्वास और दिलाने के लिए, भक्ति का श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने के लिए, भक्ति को तप्रत बढ़ाने के लिए, भक्तों को व्रत में मति व्रति लगाने के लिए ही भगवान हमेशा इसी प्रकार के लीला करते हैं और करते ही रहेंगे। इस प्रकार अगर नरसिंह चरित्र तो बोलते रहेंगे, कहते जाएंगे अगाध है हरि अनंत, हरि गुण अनंत, हरि कथा अनंत, और हम ये मूर्ख अति सीमित अति मूर्ख उनका लीला कहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, अति असमर्थ है। तो जिस प्रकार अनंत आकाश में एक पक्षी अपने जो पंखों की सहारे पर, जितने छोटे से पंख हो इतने दम भर सकता है, इतने दूर उड़ सकता है, तो अपना ये दुर्बुद्धि, ये जो दुस्साहस है, उसी के कारण भगवान की लीला वाचन करने के लिए ये मंदबुद्धि ये दुस्साहस कर बैठे, इसके लिए सब आपने हमको कृपा करें, भगवान स्वयं की कृपा करेंगे। और यहाँ पर सब बैठ करके मैं आशा करता हूँ सब कम से कम आज अद्यावधि ये संकल्प लेना चाहिए कि अति अद्भुत अति उत्तम भगवान के प्रिय लगने वाली आज के वैशाख शुक्र चतुर्दशी निरसंग आविर्भाव के जो व्रत है, व्रत करने के लिए कल मन में संकल्प कर लीजिए। भागवत में कहा गया है ये कलिजुग में विशेष गुण है, परीक्षित महाराज जब देखे कली को ये विशेष गुण उनको दिखाई पड़ा, सारंग इव सारभुक, उन्होंने भ्रमर जैसा देखे ये सार गुण कलिजुग में है। क्या गुण, ना कोई ये कलिजुगी आदमी जो कोई अच्छे काम करने के लिए मन में केवल संकल्प भर कर लेता है तो उनका फल उसको मिल जाता है, अब करेगा तो और बात है, केवल कर नहीं पाया मन में, डिसाइड तो कर ले, संकल्प तो कर ले मैं करना चाहता हूं, इतने में फल बन पड़े, और करेगा तो और कहना ही क्या है। और जो गलत पाप आदि क्रिया पाप कर्म कितने मन में सोचे प्लानिंग करते रहे, कुछ का फल नहीं निकलेगा उसका, जब तक नहीं करे प्रैक्टिकली, जब तक शरीर से क्रिया को नहीं करे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन पुण्य कर्म ऐसे ऐसे भगवत भक्ति कर्म सोचने मात्र से, विचार संकल्प करने मात्र से फल देने वाले है। तो हे मेरे प्रभुगण, हे मेरे भक्तगण, कृपा करके आज के पवित्र उत्तम तिथि में, आज के हरिवासर में, आज के नृसिंह देव के आविर्भाव तिथि, शुभ आविर्भाव तिथि में, ये संकल्प का शुभ तिथि में ये शुभ संकल्प सब कर लीजिए। हे प्रभु, हम आपके ये व्रत उत्तम व्रत करने के लिए सर्वथा असमर्थ है, सर्वथा अयोग्य है। हे प्रभु, आप ही संगति संपन्न है, आप किसी भी प्रकार से ऐसे मेरे अयोग्य असमर्थ ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो फिर भी मैं आपके व्रत करने के लिए इच्छा करता हूं, हे प्रभु, तो मेरे से कृपा करके आपके इस व्रत को निर्बाध ठीक ठीक से व्रत संपूर्ण अबाध पूरा करा लीजिए, मैं से पूरा करा लीजिए, मैं नहीं कर सकूंगा। करा लीजिए। इसी प्रकार मानस प्रार्थना संकल्प कर लीजिए तो निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण होगा और आपका कल्याण होने से आपके कल्याण में दृष्टि से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, श्री नरसिंह चतुर्दशी व्रत की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समय बहुत बहुत हो चुका है, समाप्त करेंगे। Gracias.